मैं सबसे पहले आप में से हर एक को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनको ये संदेश मिला था कि पत्नी के लिए प्रार्थना करें। वो बहुत बहुत बीमार थी। हम नहीं जानते थे कि यह क्या था और नहीं जानते कि क्या बात जगह लेती है। यह बस गंभीर रूप से उल्टी हो रही थी और वो व्यावहारिक रूप से बेहोश थी और लगभग 105 बुखार था। उसे बर्फ के कंबल में लपेट कर रखना था। लेकिन वो अब ठीक है, बुखार चला गया है और वो ठीक है। तो वो बहुत ही कमजोर है, मुझे लगता है लगभग 10 पाउंड वजन कम हो गया है। वो नहीं, आज रात उसने रविवार के बाद से अपना पहला निवाला खाया है और सो वो बहुत ही बीमार थी और हमने उसके लिए प्रभु पर भरोसा किया और उसने बस उसमें से होकर उसे बाहर निकाला। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रार्थना करना जारी रखें कि वो अपनी शक्ति को वापस पा सके। और अब इस आने वाले सप्ताह के अंत में प्रभु ने चाहा तो मुझे मियामी जाना है। मेरा पुराना मित्र भाई बोसवर्थ घर जा रहे हैं और वो अब लगभग 100 वर्ष के हो गए हैं और उसने मुझे फोन किया। उसने कहा, भाई ब्रैनम आके मुझसे अभी मिल लें, मेरे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। और वो तो ठीक है, मैं सोचता हूं कि वो मेरे लिए प्रार्थना करना चाहता है और उसके जाने से पहले अपने हाथ मुझ पर रखे, आप जानते हैं। और मैं आशा करता हूं कि मैं अपने दिनों का अंत एफ बोसवर्थ की तरह प्रतिष्ठा के साथ कर सकूं। उन सारे पुरुषों में से जिन्हें मैं संसार में जानता हूं, हर एक मनुष्य जिनसे मैं कभी संसार में मिला हूं, मैं कभी ऐसे मनुष्य से नहीं मिला जिसके जैसा बनने के लिए मैं इतना इच्छुक रहा हूं, जैसे एफ एफ बोसवर्थ एक सेवक की नाई। मेरा जो अर्थ है, मैंने कभी भी एक व्यक्ति को नहीं सुना संसार भर में कहीं भी कभी भी एफ एफ बोसवर्थ के बारे में कोई बयान दिया हो, सिवाय जो बिल्कुल ठीक सब कुछ थे, एक मसीही और हर एक चीज एक सच्चा भाई। विदा होते समय की रेत पर हमारे पैरों के निशान छोड़ जाते हैं। वो एक अद्भुत भाई है और वो अब बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं, 100 वर्ष के लगभग। सो वो अब घर जा रहे हैं, ऐसा ही है। और उन्होंने मुझे बताया, वो जानते थे कि वो जा रहे थे और बस प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का सबसे मधुर समय ठीक अभी है जब वो बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा वो जानते हैं कि वो जा रहे थे। मैंने कहा मुझे इस सप्ताह मिशिगन जाना होगा भाई बोसवर्थ। और उन्होंने कहा, भाई ब्रैनम इसे अधिक समय तक ना करें, मैं अधिक समय तक नहीं रह सकता, मैं हर समय कमजोर होता जा रहा हूँ। सो वे मेरे लिए बहुत गहरे मित्र रहे हैं कि वहाँ न जाऊँ। अब यदि मुझे वहाँ उड़ान को भरना है तो मैं वापस उड़ान भरना होगा और हो सकता है कम से कम रविवार की रात तक वापस आऊँ। यदि नहीं तो ठीक है, तो मुझे गाड़ी चलाना होगा और हो सकता है इसमें मुझे थोड़ा अधिक समय लगे। और भाई बोसवर्थ के लिए प्रार्थना करें, बस प्रार्थना करें कि परमेश्वर, और जब वो बूढ़े कुलपति को लेता है कि वो अब एक अग्निमय रथ को भेजेगा और उसे उठा लेगा। देखो मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो मेरे लिए पिता के समान है। एक और बूढ़ा व्यक्ति, वो और भाई सेवार्ड, मैं एक प्रकार से बूढ़े लोगों का भागीदार हूँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। और बूढ़े भाई सेवार्ड वे भी इसी तरह से सोने के लिए चले गए। निश्चय ही भाई सेवार्ड इतने बूढ़े नहीं थे, मैं नहीं सोचता, जैसे भाई बोसवर्थ हैं। और भाई बोसवर्थ के लिए प्रार्थना करें, इस जगह पर हर चीज गुलाब जैसी नहीं होती है, लेकिन यह उन्हें आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, पर किसी भी चीज के लिए नहीं, लेकिन बस उसके कि परमेश्वर उसे शांति से जाने दे। और फिर हम यह भी याद रखना चाहते हैं कि कल प्रभु ने चाहा तो हम इस कलीसिया के अपने एक मित्र को दफनाने वाले हैं, भाई सोल कोट्स। वो यहाँ पर बहुत बार रहा है, वर्षों से डाकघर में काम को किया है और उस रात वहाँ वेटरन्स अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। भाई कॉक्स और मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ पर गए थे और वे बहुत ही मंद पड़ गया था और वो अब जा चुके हैं, एक मसीही। और हम उसे कल दोपहर 1 बजे कोट्स के अंतिम संस्कार ग्रह पर दफनाएंगे। भाई नेविल और मैं, नेविल के 3 जन गाएंगे और हम सभाओं को विभाजित करेंगे, भाई नेविल और मैं। यही है, मैं नहीं जानता था कि हमने क्या व्यवस्था की थी और मेडा की वजह से, और इसलिए फिर उसका अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे कोट्स के अंतिम संस्कार ग्रह में होगा। और उसके बाद 2 बजे शुक्रवार को श्रीमान व्हीलर, हम उसे पॉन्ड व्हीलर कहते थे, वो एक है, वास्तव में भूल गया हूँ कि उसका क्या सही। और आप जानते हैं, मैंने इसे अभी अखबार में देखा है और नहीं जानता था कि यह कौन था जब तक मुझे पता नहीं चला। यह वर्षों से हमारा पड़ोसी था और वो अभी अभी गुजर गए हैं। उस रात वो ठीक यहाँ कलीसिया के सामने था और मैं उसे कलीसिया में लेकर आने की कोशिश कर रहा था। एक रात लगभग 3 सप्ताह पहले ठीक वहाँ पर खड़ा था और मैं बस उसे कलीसिया में आने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि वो कलीसिया गया था या किसी प्रकार का कोई पेशा था। फिर भी उसके पास एक लड़का है जो एक बैप्टिस्ट प्रचारक है, लेकिन उसका कोई पेशा नहीं था जहाँ तक मैं जानता हूँ, और वो अब परमेश्वर से मिलने के लिए चला गया है। इसलिए यह शुक्रवार दोपहर 2 बजे कुट्स के अंतिम संस्कार गृह में होगा और भाई नेविल और वे लोग गाएंगे वहाँ उस अंतिम संस्कार में। और इसलिए यदि आप में से कोई भी जो सभाओं में उपस्थित होना चाहता है तो वो कल 2 बजे है, मेरा मतलब कल 1 बजे, मैं सोचता हूँ कि यह सही है, क्या ऐसा नहीं है भाई? और 2 बजे दूसरे दिन पर, क्या यह सही है? 2 बजे कूट्स के अंतिम संस्कार गृह में। और अब रविवार की सुबह, शनिवार को प्रसारण होगा और भाई नवीन शायद आपको बता देंगे। तब तक बस क्या यदि हमारे पास रविवार की रात के लिए एक चंगाई की सभा हो सकती है, या हम जिस समय वापस आएंगे, यदि मैं भाई बोसवत को देखने के लिए फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरूंगा। मैं नहीं जानता कि मैं उससे कैसे दूर जाऊं। वो कितना प्यारा पुराना मित्र है और संभवत है हमारा मिलने का अंतिम समय हो, यदि प्रभु इस धरती पर इसकी अनुमति देता है। और वो, मैं नहीं जानता कि मैं उससे तुरंत दूर जा सकूंगा या नहीं, और मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप जानते हैं कि ये किस तरह से है। आपके पास अन्य चीजें होती है जो आपको करनी है। अब एक कथन है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जबकि वहाँ बहुत से लोग नहीं है और लोग जो मेरे मित्र हैं, मैं बहन स्मिथ को वहाँ देखकर खुश हूँ। पहली बार मैंने उसे लंबे समय में देखा है। आप कैसी है बहन स्मिथ? प्रभु, एक वर्ष पहले मैं सोचता हूँ कि पिछली बार मैंने आपको देखा था बेडन हार्बर में। मैं आशा करता हूँ कि मैं किसी समय वहाँ पर जाऊँगा, ये ठीक है। मैं सोचता हूँ कि पिछली बार मैंने आपको लुइसविले में अंतिम संस्कार की सभा में देखा था, और मुझे बहन स्मिथ अच्छी तरह याद है। हम कैसे, मैं अक्सर उसे ट्रक में बैठा कर लाता था जब हम कलीसिया जाते थे। पुराने कोयले का डाबर इसके पीछे की ओर लटक रहा था और चक्के के प्रतिरोधक ऊपर और नीचे झूल रहे थे और ये ठंडा था, और मैं एक पैर बाहर की ओर करके बैठा होता। ओह प्रभु, तब से नदी में बहुत सारा पानी बह चुका था बेन स्मिथ। जी हाँ श्रीमान, तो ठीक है, हम उन बहुमूल्य यादों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं और अब भी उससे प्रेम करते हैं। एक बात किसी को आश्चर्य हो सकता है, एक रात मैं भाई प्लेमन से यह रास्ते पर बात कर रहा था और तभी तो किसी ने कहा, जैसे ही सभा समाप्त हो जाती है, भाई ब्रैनम को कौन सी बात नीचे उतरकर और जाने को लगाती है? यहाँ यह बात ऐसी है, मेरी पत्नी अकेली होती है, देखा, और यदि मैं बात करता हूँ तो मैं आधी रात तक बात करूँगा, और वो वहाँ पर होती है, ज्यादातर समय अकेली ही बैठी रहती है, और यही कारण है कि मैं जल्दी से उसके पास वापस जाता हूँ। आप देखते हैं, एक रात के समय में, क्योंकि मैं बात करने लगता हूँ तो मैं बहुत देर तक बात करता हूँ। मैं इस पर 1.5 घंटे बात करूँगा। मैं बस उनके पास जाकर और यही नहीं कह सकता, आज रात आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं बस रुककर और बात करने लगता हूँ, और कोई तो किसी विषय पर बात करने लगता है, और फिर मैं वहाँ 1 घंटे तक होता हूँ, देखा, और इसलिए वो बैठी रहती है और प्रतीक्षा करती है और इत्यादि, और इसलिए ऐसा है। मैं बस नहीं चाहता था कि आप ऐसा सोचे, क्योंकि मैं अपने मित्रों से मिलना नहीं चाहता और उनसे हाथ मिलाना नहीं चाहता और हमारी संगति को व्यक्त करना और आदि आदि, लेकिन यह बस इस तरह की एक समस्या थी। इसलिए अब हर एक जन बीमारों और पीड़ितों के लिए प्रार्थना में रहे, और श्रीमती हार्वे उस सारी परेशानी में है, वो ठीक हो रही है। जी हाँ श्रीमान, और मैं नहीं देखता, मैं अब वहाँ हो सकता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई तो यहाँ एक डॉक्टर है, और यदि मैं इस मंच पर गलत हूँ तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उन डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराएगा जो उन्होंने महिला के साथ किया। मैं शल्य चिकित्सा में विश्वास करता हूँ, मैं दवाओं में विश्वास करता हूँ, निश्चय ही मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें यहाँ हमारी सहायता के लिए भेजा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने मोटर कारों और इत्यादि के लिए मैकेनिक को भेजा है, लेकिन वो छोटी महिला, डॉक्टर ने उसे पीठ के बल लिटा दिया था और कहा वो कैंसर से भरी हुई थी, वहाँ उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बच्चों के समूह की छोटी माँ। मैं उसके पास जाकर और उसे समझाने की कोशिश की कि कैसे प्रार्थना के जरिए से, और वो बस एक युवा महिला ही है लगभग 25 वर्ष की, और कैसे परमेश्वर ने उसके छोटे बच्चे को चंगा किया। इसे अब बच्चों के अस्पताल में चमत्कारिक बालक कहा जाता है, मस्तिष्क के बुखार से। और उस छोटे बच्चे की क्या ही भयानक स्थिति थी, और प्रभु ने इसे तुरंत ही चंगा कर दिया। वे डॉक्टर लोग इसे नहीं समझ सके। मैं श्रीमती हार्वे के पास गया और मैंने कहा, अब श्रीमती हार्वे, डॉक्टरों ने आपको छोड़ दिया है। जी हाँ श्रीमान, यह। और उसके पति ने कहा, हाँ वहाँ कुछ भी नहीं किया जा सकता है, वह पूरी तरह से कैंसर से भरी हुई है। मैंने कहा, तो ठीक है, अब हम जो करना चाहते हैं वो है परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर चंगा करेगा, वो आपको चंगा करेगा। और मैंने कहा, यह किस तरह से होता है, हो सकता है कैंसर तुरंत ना छोड़े, लेकिन यदि हम प्रार्थना करते हैं तो कैंसर का जीवन छोड़कर चला जाता है। आप अभी भी कुछ समय के लिए बीमार हो सकती हैं, और मैंने कहा, आपको तुरंत ही राहत मिल सकती है। और मैंने कहा, तब कुछ दिनों के बाद आप हो सकता है पहले से अधिक बीमार हो जाएं, लेकिन मैंने कहा, आपको अपने विश्वास को कैंसर के विरुद्ध रखना होगा। मैंने कहा, यदि कैंसर जीवित रहता है तो आप मर जाते हैं, यदि कैंसर मर जाता है तो आप जीवित रहते हैं। और मैंने कहा, अब हम प्रार्थना करेंगे, और हमने प्रार्थना की, और हर एक प्रमाण के साथ जो मैंने देखा, परमेश्वर ने महिला के शरीर को छुआ और वो तुरंत ही ठीक हो गई। वो मेरी माँ से मिलने के लिए चली गई, वो आस पड़ोस में जाती, जब वो बस इस तरह के कष्ट की स्थिति में थी उसे कोई दर्द नहीं था, और फिर लगभग 3 दिनों के बाद वो फिर से बीमार होने लगी। और उसके बाद ये पता चला कि नगर के लोगों ने कहा कि वे यदि डॉक्टर इसका ऑपरेशन करेंगे तो डॉक्टर के बिल का भुगतान करेंगे। और अब यदि मैं गलत हूँ तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे, लेकिन उन्होंने उस युवा माँ को लिया, उसे एक बलि का बकरा बनाया, वे उसे वहाँ से बाहर ले गए, और यहाँ तक कि उसके पेट से उसकी अंतरियों को भी ले लिया, और हर एक चीज को, दोनों को मूत्रालय से लिया और मल त्याग से, और उन्हें बाहर की ओर निकाल दिया। और ऑपरेशन की टेबल पर 9 घंटे से भी ज्यादा समय तक थी। नर्स ने कहा, यह एक कसाई खाने की तरह लग रहा था, जहां उन्होंने उसके अंतकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाल दिया, और प्लास्टिक के अंडाशय और प्लास्टिक की नलियों को लगा दिया। यह बात साफ है, लेकिन यह सत्य है। और प्लास्टिक की आंतें और इस तरह की चीजें, और उस महिला को उस संकट में डालकर छोड़ दिया। एक छोटी माँ, मैं कहता हूँ, मेरी इसके प्रति जो सोच है कि वे डॉक्टर लोग हत्या के दोषी हैं। उसने उन्हें बताया, उसने कहा, भाई ब्रैनम ने मेरे लिए प्रार्थना की और कहा, हम विश्वास करने जा रहे हैं कि हमारा कैंसर खत्म हो चुका है। कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खबर है, तुम्हारा कैंसर जीवित है। वो यह कैसे बता सकता है, यह तो अंदर था, कोई एक्सरे इसे नहीं बता सकता। कैंसर एक, आप एक्सरे के द्वारा कैंसर को नहीं बता सकते हैं, यह अपने आप में गूदा होता है, आप इसे नहीं देख सकते हैं। वहाँ केवल एक ही काम करना है, स्त्री को काट दें और उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, बस ऐसा ही है। अब यदि यह एक छोटी माँ रही थी, मैं बस उसके विश्वास को परमेश्वर के प्रति परखने देता हूँ, बजाय इसके कि किसी एक को इस तरह से बलि का बकरा बनाया जाए। अब यदि मैं गलत हूँ, यदि मेरे पास उद्देश्य गलत है, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे। आप देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप यह सोचें कि मैं ऑपरेशन में विश्वास नहीं करता या डॉक्टरों और चीजों में विश्वास नहीं करता, यह ठीक बात है, लेकिन मैं सोचता हूं कि आपको जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि आप किसी व्यक्ति के अंदर खोज करें। उनका उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोग के लिए न करें, यह सही है, और अब निश्चय ही वो नहीं जी सकती, बस ऐसा ही है। यदि वह जीवित रहती है तो यह निश्चय ही अब तक के सबसे महान आश्चर्य कर्मों में से एक होगा। जब स्त्री ने नीचे की ओर देखा और देखा कि उसकी आंतें एक हो रहे हैं और उसके गुर्दे दूसरी ओर कार्य कर रहे हैं, वो बस इस तरह से गुजर गई, चली गई। क्यों? यह एक चीज नहीं थी, वो बेचारी छोटी महिला चली गई थी, और बस लगभग एक 22 या 25 वर्ष की माँ, जिसके पास पालने पोसने के लिए 3 या 4 छोटे बच्चे थे। ये सबसे दयनीय बात है जो मैंने अपने जीवन में कभी सुनी है। मैंने कहा, मेरे सोचने के तरीके से डॉक्टर इसके लिए दोषी है, यदि वो उस स्त्री को केवल एक प्रयोग के लिए लेता है, क्योंकि शहर के लोग इसके लिए भुगतान करने जा रहे थे, तो ये गलत है, इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भाई मैं आपको बताता हूँ, यह असंभव बात नहीं है और ऐसा नहीं है, यह संभव है और संभवत भी है, क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक हाथ कट गया था। आप सभी स्वयं इसे अखबार में देख रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थना की गई थी और यह हाथ यहां ऊपर की ओर था, यहां तक बढ़ गया है, इतना तक कि अब इस पर उंगलियां बाहर आ रही थी, कोहनी से होते हुए, कलाई में से होते हुए, हाथों में से होते हुए और हथेली से जुड़ने वाला कुछ भाग उंगलियों पर पीछे था। आप देखते हैं, यह मैं सोचता हूँ हर महीने विश्वास के संदेश वाक में छापा है। यहाँ तक कि जब उसने अपने हाथों को इस तरह से बाहर निकला हुआ पाया तो इसने दिखाया कि उसका हाथ कहाँ से गया था, जहाँ से बढ़ चुका है। हर महीने ये कैसे आता है, लगभग एक वर्ष से। निश्चय ही यह सही है, मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा बहुत ही कम होता है। देखो, यह एक बहुत ही दुर्लभ चीज है, कभी तो एक बार मैं इसके बारे में सुनता हूँ। अब भाई बोसवत के साथ उसने एक रात एक महिला के लिए प्रार्थना की और मेरी एक सभा में थी, लेकिन भाई बोसवत ने तुरंत ही किया था। इसे करने में मुझे काफी समय लगा। उन्होंने एक महिला के लिए प्रार्थना की, अब मैंने उस महिला की गवाही को पढ़ा, उसे कैंसर था, बिना नाक के थी, उसकी नाक को खा लिया था और अगली सुबह महिला की नाक थी। अब मैं ये जानता हूँ, अब यह भाई बोसवत की बात है, उनकी पुस्तक में है, जिसका नाम मसीह चंगा करने वाला है। मैं सोचता हूँ या तो आनंद लेने वाला इस किताब में है। अब यह स्त्री की गवाही में है जो उसके नाम और पते के साथ है, और उसके पास पड़ोसी और डॉक्टर और हर एक चीज है जो उसे साबित करते हैं कि ऐसा हुआ है। अब लिटिल रॉक अकरसांस में एक रात एक कमरे में मैंने वहाँ प्रार्थना की, लिटिल रॉक में नहीं लेकिन जॉन्सबोरो में, जो मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा मैं तब तक बना रहूंगा जब तक मैं अंतिम व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं कर लेता। मैं 8 दिन और रात मंच पर था, देखो, और फिर और साथ ही कमरे के पास वहाँ एक महिला आ रही थी, उसके रुमाल को इस तरह से ऊपर रखा हुआ था और मैंने सोचा कि वो रो रही थी, और मैंने कहा ओह, मैं समझता हूँ कि यह सुबह के 2 या 3 बजे थे। मैंने कहा मत रो बहन, परमेश्वर चंगा करने वाला है। उसने कहा मैं रो नहीं रही हूँ भाई ब्रैनम। उसने उस रुमाल को हटाया, उसकी कोई नाक नहीं थी। देखो, डॉक्टरों ने कहा था कैंसर ने उसमें से उसकी सफेद हड्डी को खा लिया, वे दिखा रहे थे, और मैंने उसके लिए प्रार्थना की और प्रभु से उसे चंगा करने के लिए मांगा। और उसके बाद लगभग 4 या 5 सप्ताह बाद मैं टेक्सरकाना में था और वहाँ एक अच्छे कपड़े पहने हुए सज्जन व्यक्ति बैठा हुआ था। उन्होंने कहा मैं बस कुछ शब्द बोल सकता हूँ भाई ब्रैनम। जैसे ही वो मंच पर पहुँचा, उनमें से एक संचालक ने उसे शांत कराने की कोशिश की। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। उसने कहा आप इस युवा महिला को पहचानते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। उसने कहा यदि आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप इसे पहचान लेंगे, और वो टेक्सरकाना में एक संहारक नाशक था और वो उसकी माँ थी, जिसकी एक नई नाक बढ़ चुकी थी, बिल्कुल जैसे दूसरे लोगों के आकार के जैसे ही थी। अब ये दिखाता है कि परमेश्वर, मैंने ऐसा होते हुए देखा है। अब परमेश्वर छोटी श्रीमती हार्वे के लिए ऐसा कर सकता है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो करता है, क्योंकि बेचारी वो छोटी सी स्त्री जीना चाहती है। भाई टोनी, क्या आपके पास कुछ था?
Yeah.
आमीन आमीन। जी हाँ, यह भी अच्छा है। हाँ, वो निश्चय ही से करेगा, वो एक चंगा करने वाला है।
Yes. Yes. Yes, brother. Sure.
मैं निश्चय ही तो ठीक है। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इसे आपके लिए वापस लौटा देता है। पुत्र, आप ठीक इसे वापस ले सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं। यह बिल्कुल ठीक है। यह परमेश्वर की महिमा की गवाही के लिए है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर इसे करेगा। ओह, वह यदि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो वो सारी चीजों को कर सकता है। यदि वो इसे नहीं कर सकता सारी चीजों को, तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। वहाँ कुछ तो है जिसने हमें बनाया है कि हम क्या हैं, जिस तरह से हम हैं, या तो हमारे पास एक पक्षी की तरह एक सिर होता, या इसी तरह से कुछ तो होता। यदि हमारे पीछे कोई सर्वोत्तम मन नहीं होता था कि हम में से हर एक को एक विशिष्ट गुण के साथ बनाए, ताकि एक बतूल का पेड़ बनाए, एक चिनार का पेड़, एक खजूर का पेड़ और उनके बीच अंतर रखता है कि वे क्या हैं। हम में से किसी को ना कुछ पंख के साथ और किसी को परों के साथ और किसी को चमड़ी के साथ कि आप देखो, यह इसके पीछे एक सर्वोत्तम मन है। यही है इसे नियंत्रित करता है। निश्चय ही वो सारी चीजों को अपने हाथों में थामे हुए है, और मैं जानता हूँ कि वो सारी चीजें कर सकता है। और हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सही बात है, हमारे पास।
Yes, ma'am, it's all right. Go ahead. Amen.
जी हाँ महोदया, कोई बात नहीं, बोलिए। आमीन। आप जानते हैं, मैंने सोचने की कोशिश की है बहन स्नाइडर, एक बार जब मैं यहाँ उस अभिषेक में खड़ा हुआ था, मैंने सोचा, मैंने भाई कॉस को बताया, मैंने कहा मैं यहाँ तक आराधनालय में उन विचारों को परखने की सभाओं में अब और अधिक जाने की कोशिश नहीं करूंगा। ओह, आप नहीं जानते कि कैसे शैतान मुझे एड़ी के पास काटता है बहन। वो किस तरह से करता है, आप जानते हैं, मुझे इन मनों को परखने के विषय में बताते हुए। और यहाँ यह मालूम पड़ा कि श्रीमती वुड की बहन यहाँ, मैंने उनके लोगों में से किसी को भी कभी नहीं देखा है। उनमें से एक झुंड उस समय के दौरान चंगा हो गया था, और हर कोई क्यों, आप जानते हैं, यह उन लोगों की एक बड़े प्रतिशत की संख्या है जो चंगे हुए थे। और उसके बाद अब अजीब बात है, उसकी बहन, मैंने उसके साथ एक रात का खाना खाया था उससे लगभग दो सप्ताह पहले। ओह, यह वहाँ दूर केंटकी के पहाड़ों में है। और मैं बस इतना ही जानता हूँ कि उसकी आवाज श्रीमती वुड जैसी थी, और कमरे में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, और किसी भी तरह से मैंने कभी भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसके पति के साथ अधिक बात की, बहन ने खाना तैयार किया और हम बाहर जाकर और बैठ गए और खाया और वापस अंदर आए। मैंने उसके पति से बात की, उठकर और बाहर चला गया। और परमेश्वर जो मेरा पवित्र न्यायी है वो जानता है, इस पुलपिट के पास खड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी भी उस महिला को नहीं पहचाना। और फिर चंगाई की सभा समाप्त होने के बाद मैंने पापियों को पश्चाताप करने के लिए वेदी पर बुलाया और वो इसके विरोध में बहुत ही हटी रही थी और उसने पश्चाताप किया और अपना जीवन मसीह को दे दिया। अपने हाथ को उठाया कि वो अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दे और रो रही थी। सारे अभिषेक के चले जाने के बाद मैं वेदी की पुकार को कर रहा था और आदि आदि, और फिर मुड़ा और यहाँ एक दर्शन आया और मैंने उसके भाई को देखा जो एक बहन थी, ये उसकी बहन थी और वे एक साथ थे। और मैंने सोचा कि ये चार्ली की पत्नी थी क्योंकि मैं जानता था कि उस दिन मेज पर बैठी हुई थी वहाँ चार्ली के घर पर उसकी छोटी पत्नी, वो छोटी सी स्त्री। प्रभु ने मुझे एक परेशानी दिखाई जो उसकी थी और उसी घड़ी से प्रभु ने उसके शरीर को छुआ। अब वहाँ उसकी मेज पर बैठी हुई है टोनी, जहाँ हम थे वहाँ पर गिलहरी के शिकार पर गए थे और प्रभु ने उसके शरीर को छुआ और इस चीज को ले लिया जो उसने सारे जीवन भर पहना था, उससे दूर कर दिया। बस वहाँ पर बैठा हुआ और वो छोटी महिला हमेशा ही मेज के दूसरे छोर पर खाना खाती थी, लेकिन आज वो ठीक सीधे घूमकर आती है और अपनी कुर्सी को अंदर घुमाती है और ठीक मेरे बगल में खाना खाती है। वो कभी नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही थी। उसका पति इस तरह से बैठा हुआ है और भाई बैक्स वहाँ बैठे हुए हैं और हम बात कर रहे हैं और वह उधर चली गई और अपनी कुर्सी को ले लिया और इसे यहाँ मेरे बगल में रख दिया और यह एक उद्देश्य के लिए था। प्रभु ने ठीक वहाँ पर एक दर्शन को दिखाया और मैंने उसके पति को बाहर बुलाया क्योंकि यह एक महिला की परेशानी थी। मैंने उसे बताना आरंभ किया कि क्या घटित हुआ था। उसने कहा, भाई ब्रैनम बिल्कुल इसी तरह से हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से। और वहाँ उसने महिला को बताया और प्रभु ने उसे चंगा किया, ठीक है। और फिर उस रात्रि सभा के समाप्त होने के बाद, और यह दूसरी बहन, मैंने इस युवा चार्ल्स और इस महिला को एक साथ देखा। मैंने सोचा वो अवश्य ही उसकी पत्नी होगी, लेकिन उसकी पत्नी एक सुनहरे बाल वाली है और यह तो एक अश्वेत सर वाली महिला है। और मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि दर्शन यहाँ पर एक कोने में लेकर गया और वो वहाँ बैठी हुई अपनी आँखों को पोंछ रही थी और प्रभु ने एक दर्शन को दिखाया। उसके बाद वह वेदी की पुकार, प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद बीमारों की चंगाई और वेदी की पुकार की गई थी और परमेश्वर तब तक रुका रहा जब तक उसने पश्चाताप नहीं किया और उसने अपने जीवन को दे दिया और फिर घूमकर और उसे चंगा कर दिया। और उसके पास उसकी परेशानियों ने उसे वर्षों तक सूजन दिया था और वो बहुत अधिक कमजोर हो गई और हर एक चीज, यहाँ तक कि उसके पैरों पर झुर्रियाँ पड़ गई जहाँ उसमें से सब कुछ निकल गया था, विष उसके शरीर से निकल गया। उससे बेहतर महसूस कर रही थी जो उसने कभी वर्षों में महसूस किया था। देखो और कैसे प्रभु अपने अद्भुत अनुग्रह के द्वारा ऐसा करता है। मैं सोचता हूँ कि कहानी के बारे में ऐसा ही है, क्या ऐसा नहीं है बेनवुड? और वो कैसे करता है? उसके बाद क्या कहा, एक सप्ताह में 3.25 किलो। ओह, वो परमेश्वर है, क्या वो नहीं है? और मैं आपको बताता हूँ कारण। मैंने भाई नेविस से कहा, मैंने सोचा हो सकता है उनके पास आज रात के लिए एक संदेश हो। उसने कहा नहीं, उसने नहीं कहा। और मेरे पास यहाँ कुछ प्रश्न हैं जो बाकी रह गए थे। मैंने नैतिक रूप से बाध्य महसूस किया कि यहाँ आकर और इन प्रश्नों के उत्तर को दूं, तब मेरे पास 2 या 3 और होंगे। शायद मैं आज रात को नहीं ले पाऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कुछ प्रश्नों को अभी एक प्रचारक के द्वारा दिया गया था, अभी भाई नेविल या बिलर उन्हें अभी मेरे पास लेकर आए। प्रकाशित वाक्य 21:19-20 में वे पत्थर क्या दर्शाते हैं? प्रकाशित वाक्य 5:4 पशुओं की व्याख्या करें, उसका मतलब 6 से है। ये प्रकाशित वाक्य 5 नहीं है, ये 6 है, मैं सोचता हूँ। और वे 24 प्राचीन कौन हैं? उत्पत्ति 38 के लाल रंग के सूत या धागे का क्या अर्थ था? वे उपहार कहाँ भेजे जाने हैं जो प्रकाशित वाक्य 11 के 2 गवाहों की मृत्यु के संबंध में है? 1000 वर्ष के राज्य के बाद वे संत कहाँ पर होंगे और उनके पास किस प्रकार के शरीर होंगे? हम दूतों का न्याय कैसे करेंगे? पहले कुरिन्थियों के दूतों के कारण बाल के विषय क्या बात है? कुछ अच्छे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। यही कुछ अच्छे प्रश्न हैं। मैं शायद आज रात उन्हें नहीं ले पाऊंगा, लेकिन यदि प्रभु ने चाहा तो अगली बार जब हम इसके लिए आएंगे तो मैं उन्हें लेने की कोशिश करूंगा। मेरे पास आज रात यहाँ कुछ बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इसलिए हम अभी प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करे और हम सीधे उसमें जाएंगे अगले 35-40 मिनट के लिए। अब धन्य स्वर्गीय पिता, जो कुछ आपने हमारे लिए किया है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और ओह, ये बहुत ही अद्भुत है कि कैसे आपका अनुग्रह हम तक पहुंचता है। मैं अब उस रात के विषय सोच रहा हूं और मेरा वो छोटा सा साथी बहुत बीमार था और आप दृश्य पर आ गए। उसी घड़ी से उसका बुखार उतरना आरंभ हो गया और अब पूरी तरह से चला गया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बस प्रार्थना करता हूं कि आप हरेक के साथ होंगे जिन्होंने आज रात एक विनती को मांगा है। और हम थोड़ा कुछ ही जानते हैं, जब तक यह हमारे अपने घर में नहीं आता है इसका क्या अर्थ होता है। एक छोटी सी प्रार्थना। हे परमेश्वर, क्या आप कितने वास्तविक हो जाते हैं उस घड़ी में जब एक डॉक्टर चला जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने कभी भी किसी को भी इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा। और फिर प्रभु यीशु दृश्य पर आगे बढ़ता है। हे परमेश्वर, आप हमारे लिए बहुत ही वास्तविक हैं और हम इसके लिए बहुत ही खुश हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमारे सारे आलस्य से भरे तौर तरीकों के लिए और हमारे मूर्खता भरे तौर तरीकों के लिए क्षमा करें। और ओह, बस हमें स्मरण करें प्रभु कि हम एक अंधेरी दुनिया में मनुष्य देह हैं, जो एक अंधकार और पाप और गड़बड़ी का संसार है। और हम एक पर्दे में से होकर देख रहे हैं जैसा कि यह हमारे चेहरे के ऊपर था। और हम केवल वही देखते और जानते हैं जैसा कि हम यहाँ मनुष्य के रूप में करते हैं। लेकिन किसी दिन जब वो पर्दा उठ जाता है, हम आपको आमने सामने देखेंगे और जानेंगे जैसा कि हम जानते हैं। यही वो दिन है जिसके लिए हम इच्छा को रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारी सहायता करेंगे जब हम लोगों को परमेश्वर के वचन को बताने का यत्न करते हैं। उनके अनुरोध के अनुसार हम में से सारी बीमारी को ले लीजिए। हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसे प्रदान करेंगे। आपकी दया हम पर की जाए, क्योंकि हमने इसे यीशु के नाम में मांगा है, आमीन। अब प्रश्नों के उत्तर देने में मैं देश में सबसे बेहतर नहीं हूं, आप जानते हैं, लेकिन मैं बस अपनी सबसे अच्छे जानकारी से उत्तर को दूंगा। यहाँ वो एक था जिसके साथ मैंने उस रात को आरंभ किया था और मुझे रुकना पड़ा था। एक आत्मा के द्वारा हम सब ने मसीह की देह में बपतिस्मा लिया है। आप सभी को याद होगा कि यही वो सवाल था जिस पर मैं था। अब यह निश्चय ही पहला कुरिन्थियों 12 में पाया जाता है।
This takes place.
जिस समय पर हम नया जन्म पाते हैं, ये बात जगह लेती है। ये ऐसा है, क्या ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है या कुछ समय बाद में बपतिस्मा है या ये भरा जाना है। अब वहाँ एक पूर्ण रूप से एक ऐसा प्रश्न है और हम अपना बाकी का समय ठीक उसी पर व्यतीत कर सकते हैं। और आज रात और कल रात और आगे ये ढाकता है, ये लेगा और सारी बाइबल को एक साथ जोड़ देगा। हर एक वचन को बाइबल के हर एक दूसरे वचन के साथ अवश्य ही सही तरह से एक साथ जुड़ना है। लेकिन बस इसे संक्षेप में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, साफ साफ जितना मैं जानता हूँ कि इसे कैसे बनाया जाए। नहीं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब आपके पास नया जन्म होता है। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको एक नया विचार मिलता है, एक नया जीवन। लेकिन यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। देखा, आपको नया जन्म मिलता है जब आप विश्वास करते हैं, आपके पास अनंत जीवन होता है। यह परमेश्वर का एक दान है जो आपको सर्वोत्तम अनुग्रह के द्वारा दिया गया है। उस दान को स्वीकार करने के द्वारा जो परमेश्वर आपको दे रहा है, वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। उसके पास अनंत जीवन है, यही नया जन्म है। आप परिवर्तित हुए हैं, इसका अर्थ है कि आप पीछे की ओर मुड़ गए हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मसीह की देह में डाल देता है, सेवा के लिए दानों के अधीन करता है। यह आपको और अधिक मसीही नहीं बनाता है, यह केवल आपको दानों के देह में डाल देता है। देखा, अब एक आत्मा के द्वारा पहला कुरिन्थियों 12, हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया है। अब पौलुस कहता है वहाँ विभिन्न दान हैं और इस देह में 9 आत्मिक दान हैं। और इस देह में आपको देह में बपतिस्मा लेना होगा कि इन दानों में से किसी एक के अधिकारी हों। वे देह के साथ आते हैं। लेकिन अब जहाँ तक अनंत जीवन का होना है और एक मसीह होने के नाते आप एक मसीह ही हैं, जिस क्षण आप विश्वास करते हैं। अब ये कोई बनावटी विश्वास नहीं है, यह वास्तव में प्रभु यीशु पर विश्वास करना है और उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। आप ठीक वहीं पर फिर से जन्म लेते हैं और आपके पास अनंत जीवन होता है, परमेश्वर आपके अंदर आता है। अब ध्यान दें, अनंत जीवन, यीशु ने कहा, वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और वो न्याय में नहीं आएगा लेकिन मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप ठीक तब एक नई सृष्टि होते हैं। तब पौलुस ने उन लोगों में से कुछ लोगों से भेंट की थी जो प्रेरितों के काम 19 में है। उनके पास वहाँ एक प्रचारक था जो अपोलुस के नाम से एक परिवर्तित वकील था, और अपोलोस वचनों में का एक सामर्थी मनुष्य था और वो वचनों के द्वारा साबित कर रहा था कि यीशु ही मसीह था। देखा, अब ध्यान दें, अपोलोस वचन में से होते हुए वचन के द्वारा सिद्ध कर रहा था। विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से। वह जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। आप इसे समझ गए? अपोलोस वचन के द्वारा सिद्ध कर रहा था और ये मसीही लोग थे, वे अनुकरण करने वाले चेले थे, और अपोलोस वचन के द्वारा सिद्ध कर रहा था कि यीशु ही मसीह था, और उन्होंने बहुत आनंद किया और वचन को ग्रहण किया। वे अब तक केवल यूहन्ना के बपतिस्मा को ही जानते थे। और जब पौलुस इफिसुस के ऊपरी किनारे से होकर जा रहा था तो उसने उन चेलों को पाया और उसने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया? देखा, अब जब आप विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा तुम्हारे पास अनंत जीवन होता है। यही तो नया जन्म है, यही आपका परिवर्तन है, बदलना है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसमें आपने बपतिस्मा लिया है, और इन 9 आत्मिक दानों के अधीन है कि आप में से होकर काम करे, जैसे कि प्रचार करना, सुसमाचारक, प्रेरित, पास्टर, भविष्यवक्ता और देह के सारे दान इसमें आते हैं। जब आप इस देह में बपतिस्मा लेते हैं, और यह अब यह आपको मसीही नहीं बनाता है, यह बस आपको स्थान पर स्थापित करता है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया में सेवकाय की आत्मा होने के स्थान पर रखता है। अब आप समझे? देखा, अब प्रश्न है, आइए इसका उत्तर एक एक करके देंगे। वहाँ पर 3 प्रश्न है। एक आत्मा के द्वारा हम सब मसीह की देह में बपतिस्मा लेते हैं, ये सही है। 1 कुरिन्थियों 12 इसका उत्तर देता है, ठीक है। उस समय पर नए जन्म को पाते हैं, यह जगह को लेता है। ये कब है? यही है जो वे जानना चाहते हैं। जी हाँ, एक आत्मा के द्वारा, नहीं नहीं, एक आत्मा के द्वारा हम सभी ने एक देह में बपतिस्मा लिया है। देखो, ये ऐसा नहीं है जब नया जन्म आरंभ होता है। नया जन्म आरंभ होता है जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। अब देखो, वहाँ एक भी चीज नहीं है। अब सुनना, विश्वास करने के अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप और अधिक क्या कर सकते हैं? आप इसके बारे में और अधिक क्या कर सकते हैं? बस इसे विश्वास करने के अलावा मुझे एक बात बताओ जो आप कर सकते हैं। वहाँ एक भी चीज नहीं है जो आप इसे विश्वास करने के बाहर कर सकते हैं। अब यदि कुछ भी आपके विश्वास से बाहर आता है तो वो आपकी अपनी प्रतिक्रिया नहीं है, यह परमेश्वर की प्रतिक्रिया है। इसलिए अब यदि हम कहें कि जब आप, बहुत सी बार मैंने देखा है, बहुत सी बार लोग अन्य भाषा में बोलने के आरंभिक प्रमाण को पवित्र आत्मा के रूप में मान रहे हैं, और कभी कभी लोगों को हिलाते हैं या उन्हें पीटते हैं और उन्हें थपथपाते हुए कहते हैं, ऐसा कहो, ऐसा कहो, ऐसा कहो, ऐसा कहो। आप जानते हैं, एक शब्द को बार बार दोहराना, ऐसा कहो, ऐसा कहो, ऐसा कहो। देखो, ये कुछ तो है जो आप स्वयं कर रहे हैं, और ये नहीं, ये नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आपको अन्य जुबान की उलझन हो सकती है, आपको हो सकता है बहुत सी चीजें मिलें और सनसनी होना, लेकिन यदि कुछ भी आपके अपने व्यक्तिगत विश्वास से बाहर आता है तो उसे परमेश्वर का एक दिव्य दान होना है जो आपको दिया गया है। देखा, और एक आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया है, यह सही बात है। देखो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नए जन्म से भिन्न प्रतिक्रिया है। एक जन्म होता है, एक बपतिस्मा होता है। एक आपके लिए अनंत जीवन को लाता है, दूसरा वाला आपको सामर्थ देता है, यह अनंत जीवन में सामर्थ को देता है। देखो, कार्य को करने के लिए। अब आपने इसे समझा तो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और है, दूसरा आता है, सबसे अच्छा जो मेरे पास उस रात को था। यीशु का आत्मा 3 दिन तक कहाँ था? उसकी देह क्या कब्र में थी? उसका आत्मा कहाँ पर था। अब उसकी आत्मा यदि आप वचनों में से होकर जाएंगे तो ठीक है, हम बस बहुत से स्थानों को दिखा सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ बाइबल किसके पास है। भाई स्ट्राइकर, आपके पास बाइबल है तो ठीक है। भाई नाविल, आपके पास एक है मेरे लिए भजन संहिता 16:10 निकालें। और किसके पास है बहन वुड, आपके पास वहाँ एक बाइबल है तो ठीक है। भाई स्ट्राइकर, ठीक है, दोनों में से कोई एक, आप मेरे लिए प्रेरितों के काम 2:27 निकालें। प्रेरित 2:27। और अब पहले स्थान पर जब यीशु मरा, जब आप मरते हैं तो आपका शरीर मरता है। मृत्यु शब्द का अर्थ होता है अलग होना, बस अपने प्रिय जनों से अलग होना। लेकिन यहाँ उसने यह कहा संत यूहन्ना के 11वें अध्याय में, वो जो सुनता है, नहीं मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यह संत यूहन्ना 5:24 में है, वह जो मेरे वचनों को सुनता है उसके पास अनंत जीवन है। यीशु ने मार्था से कहा जो उससे भेंट करने आई, उसने कहा यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन अब भी जो कुछ भी तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे वो देगा। उसने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, देखा वह जो मुझ पर विश्वास करता है यद्यपि वो मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा। अब हम में एक भाग है जो मरता नहीं है, और जैसा कि मैं वचनों की पंक्ति में से होकर आया हूँ, हर एक चीज जिसका आरंभ है उसका अंत होता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई आरंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए जब हम मसीह को, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रिया बन जाते हैं, और हमारा जीवन बस उतना ही अनंत है जितना कि परमेश्वर का जीवन अनंत है, हमारे पास अनंत है। अब वो शब्द सदा के लिए, हम इसमें से होकर गए हैं, सदा के लिए शब्द समय की एक अवधि है, सदा के लिए, और ये जोड़ता है सदा के लिए, और हमने यहाँ पाया इसका अंत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे कष्टों का अंत है, और सारी बीमारियों और सारे दुख और सारे दंड का और अधोलोक का अपने आप में एक अंत होता है। लेकिन अनंत जीवन का कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि इसकी कोई शुरुआत ही नहीं थी, यह कभी भी मर नहीं सकता क्योंकि यह कभी जन्मा नहीं था, इसके दिनों की कोई शुरुआत नहीं थी, इसके समय का कोई अंत नहीं है। अब केवल एक ही जरिया है कि हम अनंतता में जी सकते हैं, वो है कुछ ग्रहण करने के जरिए से जो कि अनंत है। और परमेश्वर था इससे पहले कि वहाँ कुछ भी होता, यह परमेश्वर था। परमेश्वर का कभी भी आरंभ या अंत नहीं था, और परमेश्वर यह महान आत्मा था। हमने उसका चित्रण उस मेघधनुष के 7 रंगों के समान किया है जो ढाकता है। धनुष वास्तव में पृथ्वी को ढांपता यदि यह पृथ्वी पर नहीं टकराता। यह पृथ्वी की वक्रता के घेरे में बस एक पानी है जो इसे बनाता है। लेकिन अब जबकि परमेश्वर अनंत है और वह सिद्ध था, सिद्ध प्रेम, सिद्ध शांति, सिद्ध आनंद, सिद्ध संतुष्टि, वे सारी 7 आत्माएं, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं, वे बाहर आती हैं जिसने परमेश्वर को बनाया था, जो सिद्धता थी। उसके बाहर की हर एक चीज कुछ तो ऐसा है जो उससे दूषित हो गया है। अब केवल एक ही जरिया है कि हम सिद्धता की ओर वापस आ सकते हैं, कि उसके साथ वापस आएं, सिद्धता के साथ जो कि परमेश्वर है। तब हम सिद्धता में आते हैं, तब हमारे पास अनंत जीवन होता है, बिना अंत के या बिना किसी चीज के, यह बस हमेशा के लिए अनंत जीवन होता है। अब वो प्राण के विषय बता रहा है, आत्मा के विषय बोलता है, क्योंकि हम अपने शरीरों को हम में से सबसे पवित्र लोगों की कब्र पर ले जाते हैं इस शरीर के लिए। और शरीर पहले स्थान में जब परमेश्वर, वो लोगों जो परमेश्वर में से बाहर आया, या जैसा कि मैं इसमें से होकर गया हूँ, कैथोलिक इसे कहते हैं परमेश्वर का अनंत पुत्रत्व, जो जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस शब्द का यहाँ तक कोई मतलब भी नहीं निकलता है। देखो, एक अनंत पुत्र नहीं हो सकता है क्योंकि एक पुत्र का आरंभ होना था, और इसलिए यीशु का आरंभ था, परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं था। देखा, लेकिन पुत्र अनंत पुत्रत्व नहीं था, लेकिन वो पुत्र जो आरंभ में पिता के साथ था, वो लोगोस था, जो परमेश्वर में से बाहर आया था। और ये परमेश्वर का दैविक शरीर था जो बाहर निकला, मानव आकार में, जिसके पास ऐसी आंखें नहीं थी जैसे आप देखते हैं, एक बेहतर आंख थी, इसके ऐसे कान नहीं थे जैसे आप सुनते हैं, लेकिन इससे कहीं अधिक सुनने की क्षमता थी। देखो, यह एक दैवीय शरीर था कि यह सारा मेघधनुष अपने स्तर से नीचे उतरकर एक दैविक शरीर में आ गया। मूसा ने इसे देखा जब यह इस तरह से चट्टान में से होकर निकला। उसने पीछे के भाग को देखा, कहा यह एक मनुष्य की तरह दिखाई देता है। अब्राहम ने उसे देखा जब उसने मनुष्य के देह के अंदर कदम रखा और एक बछड़े को खाया, कुछ दूध पिया, मक्खन खाया। अब्राहम ने उसे देखा जैसे उसने तब कदम रखा और फिर तुरंत उसमें से गायब हो गया। हम देखते हैं कि हमारे शरीर धरती के 16 तत्वों से बने हैं। वे बस एक साथ आते हैं और परमेश्वर ने उन्हें एक साथ रखा और इन देहों में दो दूतों को रखा। वे दूत जो खड़े होकर और बातें की और दूत मनुष्य थे उस एक और उस समय पर। अब ध्यान दें, हम ये पाते हैं मलकीसेदेक कौन था सिवाय स्वयं परमेश्वर के। यह कोई और नहीं हो सकता था क्योंकि वो शालेम का राजा था जो कि यरूशलेम है। उसका कोई पिता या माता नहीं था। यीशु नहीं हो सकता था क्योंकि उसके पिता और माता थे। उसके दिनों की कोई शुरुआत नहीं थी, ना ही जीवन का कोई अंत था। केवल एक ही है जिसके पास ये होता है, यही परमेश्वर है। यह परमेश्वर था जो यहाँ एक दैविक शरीर में वास कर रहा था। देखा, ध्यान दें, शालेम का राजा। अब परमेश्वर युग में से होते हुए अपने लोगों में से होकर जिया है। यह परमेश्वर था जो दाऊद में था, जिसने उसे पहाड़ के ऊपर बैठाया और एक अस्वीकृत राजा के रूप में और रोया। वही आत्मा दाऊद के पुत्र यीशु में प्रकट हुआ था जो यरूशलेम में ठुकराया गया था और रोया था। यूसुफ चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया, अपने ही भाई के द्वारा घृणा किया गया, अपने पिता के द्वारा प्रेम किया गया। वो फिरौन के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ था और कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता था जब तक कभी उसे यूसुफ के द्वारा ही आना था। और तुरही फूकी गई और हर एक घुटना यूसुफ के आगे झुक गया जो मसीह का सिद्ध नमूना है। यह मसीह का आत्मा था जो उन मनुष्यों के द्वारा जीवित था। देखा, अब यहाँ जब यीशु मरा, यह परमेश्वर था जो देह में प्रकट हुआ। परमेश्वर मनुष्य बन गया। छुटकारे के नियम के अनुसार केवल एक ही जरिया है कि एक मनुष्य इज़राइल की खोई हुई संपत्ति को छुड़ा सकता है। उसे निकट कुटुंबी होना था, उसे एक निकट कुटुंबी का संबंधी होना था। रूत की किताब इसे सुंदरता से समझाती है, और उसे निकट कुटुंबी होना था। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य का निकट कुटुंबी बनना था ताकि मनुष्य परमेश्वर का कुटुंबी बन सके। देखा, उसके पास उसमें एक आत्मा है। एक मनुष्य जब वो जन्म लेता है, क्योंकि यह एक प्रकृति की आत्मा है, यह एक संसार की आत्मा है, यह इस संसार के उस ईश्वर की आत्मा है। वो मात्र आदम की वंशावली है। एक पेड़ खुद को फिर से उत्पन्न करता है, वनस्पति स्वयं को फिर से उत्पन्न करती है, जानवर खुद को फिर से उत्पन्न करते हैं, मनुष्य स्वयं को फिर से उत्पन्न करता है। वे मूल सृष्टि के उप उत्पाद हैं। इसे पकड़ा। अब जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो वो उसमें इस संसार की आत्मा के साथ जन्म लेता है। यही कारण है कि उसे फिर से जन्म लेना होता है, क्योंकि ये आत्मा माता और पिता के गर्भधारण के द्वारा आई है, जो कि शारीरिक संबंध का गर्भधारण था। और ये पूरी तरह से हमेशा के लिए नहीं जी सकता, इसलिए उसे फिर से जन्म लेना ही होगा। और इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, परमेश्वर को नीचे आकर और उसके लिए फिर से जन्म लेने के लिए एक मार्ग को बनाना था, क्योंकि उसके पास खुद को छुड़ाने का कोई तरीका नहीं था। वो बिना आशा के था। वो नहीं, बिना आशा के, बिना परमेश्वर के, बिना मसीह के संसार में नष्ट हो गया और चला गया। वो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कर सके। हर कोई मायने नहीं रखता यदि वो एक महायाजक था, यदि वो एक बिशप था, यदि वो एक पोप था। वो जो कुछ भी था, वो बस उतना ही दोषी है जितना कि अगला मनुष्य दोषी है। इसलिए इसे एक को लेना था जो दोषी नहीं था इसे करने के लिए। और केवल एक ही है जो दोषी नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर था। और परमेश्वर को नीचे आना था और मनुष्य बनना था, और वो मसीह के रूप में आया ताकि मृत्यु के डंक के लंगर को ले, ताकि मृत्यु के डंक को बाहर निकाले, जिससे कि हम छुड़ाए जाएं, कि हम ना ही हमारे कामों के द्वारा या हमारी भलाई के द्वारा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा बचाए जाने के लिए। तब हम उसके जीवन को इस मरणहार देह में ग्रहण करते हैं, और अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और हमारे अंदर अनंत जीवन होता है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए यीशु जीवित है और ना कोई मनुष्य, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना दुष्ट या कितना अच्छा है, जब वो इस धरती को छोड़ता है तो वो मरा नहीं होता है, वो कहीं तो और होता है, लेकिन उसके पास एक जीवन होता है जो नष्ट हो जाएगा उसके कामों के लिए नरक में दंडित होने के बाद वो, लेकिन फिर भी उस जीवन को समाप्त होना है। केवल एक ही प्रकार का अनंत जीवन होता है। अब हम इसमें से होकर गए हैं, यदि एक मनुष्य पापी हो सकता है और हमेशा के लिए दंडित किया जा सकता है, उसे हमेशा के लिए तब दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके पास अनंत जीवन ना हो। यदि उसके पास अनंत जीवन है तो वो बच गया है, देखा। इसलिए केवल एक ही प्रकार का अनंत जीवन है और वो है जोई, परमेश्वर का जीवन, और वो नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन दुष्ट लोग प्रतीक्षा करने के स्थान में होते हैं, पीड़ा में उनके न्याय के लिए, ताकि शरीर में किए गए कामों के अनुसार न्याय किया जाए अंतिम दिन में। अब लेकिन हम किसी मनुष्य के पाप उनके आगे जाते हैं, कुछ उनके पीछे जाते हैं। अब यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमें क्षमा करने के लिए है, इसलिए हमें कभी भी परमेश्वर के न्याय के लिए खड़े नहीं होना पड़ेगा। आप समझ गए? देखो रोमियो 8:1, इसलिए अब उन पर कोई दोष नहीं है जो मसीह यीशु में है। जो मसीह में है यही है जो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखो हम पर कोई दोष नहीं है और हम मसीह यीशु में हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं चलते लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा, वो जो मेरे वचनों को सुनता है उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है। और यदि मुझे मसीह में स्वीकार किया गया है और मसीह ने मेरे न्याय को ले लिया और मैंने उसके पापों के प्रायश्चित को स्वीकार किया, भला परमेश्वर मेरा न्याय कैसे कर सकता है? उसने मेरा न्याय कर लिया। जब उसने मसीह का न्याय किया तब मैं न्याय से मुक्त हूँ। फिर जब मैं लहू को देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़कर निकल जाऊंगा। देखा, लेकिन अब दुष्ट ऐसा नहीं है, वो पीड़ा के स्थान में चला जाता है। और हम जानते हैं कि यह सच है, दुष्ट जीवित है, वो एक पीड़ा के स्थान में होता है, वो एक ऐसे स्थान पर है जहां वो नहीं जानता। इसी तरह से ये आत्मिकवादी और बिचवाई करने वाले लोगों की इन आत्माओं को बुलाते हैं जो चले गए हैं, किसी प्रकार का खिलवाड़ और गंदे चुटकुले और चीजें जो वे सुनाते हैं। यदि आपने कभी उन्हें देखा होगा तो ठीक है, क्यों वे नहीं? इस कुमारी पाइपर को देखें। इससे पहले मेरे लेख डोनी मार्टर्स का अद्भुत कार्य पर जाएं। कितनों ने उस लेख को पढ़ा है? जी हाँ, आप में से बहुतों ने पढ़ा है निश्चय ही, और यह रीडर्स डाइजेस्ट में है। क्या आपने ध्यान दिया, इसके ठीक पहले कुमारी पाइपर आगे गई, सबसे बड़ी आत्मिकवादी जिसे संसार ने कभी जाना है। उसकी कहानी के लिए 12 पन्ने दिए गए और 12 वर्षों से उन्होंने उसकी बात को सारे संसार में बता दिया था, और वैज्ञानिक प्रमाण और सब कुछ कि वो पूरी तरह से मरे हो के साथ बात करती है और लोग ऊपर आते हैं। क्या परमेश्वर के नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया था? कोई पश्चाताप नहीं, कोई दिव्य चंगाई नहीं, इसके बारे में कुछ भी नहीं। देखो केवल एक चीज थी जिसका उन लोगों ने उल्लेख किया था, जॉन क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं जॉर्ज हूँ जो एक फलाना स्थान पर था और मैंने ऐसा और ऐसा किया और ऐसा और ऐसा किया। तुम्हें याद है कि हम उस स्थान पर गए थे और ऐसा किया था? देखो वे बस इतना ही जानते हैं, वे जा चुके हैं बीते हुए से, उनके लिए न्याय के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। जिस तरफ पेड़ झुकता है उसी तरह से वो गिरता है, और जिस अवस्था में आप मरते हैं यही वो कारण है कि मैं मरे हुए के लिए प्रार्थना करने की बात पर असहमत होता हूँ। देखो प्रार्थनाओं की बिचवाई करना या संतों का प्रभुभोज और इत्यादि के प्रति असहमत हूँ, यह परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो सकता। किसी के लिए भी जाने के बाद उसके लिए प्रार्थना करना अच्छा नहीं है, वे समाप्त हो गए हैं, वे उन्होंने दया और न्याय के बीच की रेखा को पार कर लिया है, वे या तो दया पर चले गए हैं या दया से दूर चले गए हैं। यीशु ने ऐसा कहा संत मत्ती के 16 अध्याय में, उसने इसे सिखाया मरकुस का 16 अध्याय। मैं सोचता हूँ कि यही है, धनी मनुष्य और लाजरस, कोई भी मनुष्य इस गहरे दरार को पार नहीं कर सकता और कभी भी पार नहीं कर पाएगा। आप वहाँ हैं, देखा, इसलिए इससे बात खत्म हो जाती है। अब लेकिन जब मसीह मरा, हर एक चीज को गवाही देनी थी कि वो मसीह था। अब आइए हम आपके प्रश्न पर आएं। पहली बात, तारों ने चमकने से इंकार कर दिया, सूरज ढल गया, चंद्रमा इसके उजाले को नहीं देता है, धरती ने अपनी चट्टानों को उगल दिया उसकी मृत्यु पर, और उसने जाकर और उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे, जिन्होंने नूह के दिनों में तीरस धरते हुए पश्चाताप नहीं किया। उसे उन्हें पहचानना था। इसकी ओर देखो, और यदि संयोगवश आज रात्रि यहाँ कोई पापी है तो इस पर एक मिनट के लिए सोचें। किसी दिन यह सुसमाचार जिसे आप ठीक अभी प्रचार होते हुए सुन रहे हैं, आपको इसकी गवाही देनी होगी। कहीं तो आप अपने घुटने को झुकाएंगे, भले ही आप कोई भी हो। यह हो सकता है आज से 10,000 वर्ष हो, यह हो सकता है सुबह में हो। जब भी ऐसा होता है, आप कहीं तो झुकेंगे और आप उसी सुसमाचार को सुनने जा रहे हैं जो ठीक आपको पहले प्रचार किया गया है। क्योंकि उन प्राणों के कैद में होने के बाद जिन्होंने हनोक के समय पश्चाताप नहीं किया, और जब उन सभी ने प्रचार किया और परमेश्वर के धीरज के लिए, जैसा कि यह अभी है, आने वाले समय की प्रतीक्षा कर रहा है, और नूह और हनोक उन सभी ने प्रचार किया, और वे लोग जो हंसे और उनका मजाक उड़ाया, और वे कैद खाने में थे, और यीशु ने जाकर और उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे। उसने गवाही दी, स्वर्ग ने गवाही दी कि वो था, धरती ने गवाही दी कि वो था, नरक ने गवाही दी वो था। बाइबल ने कहा कि यह दाऊद बहुत वर्ष पहले भजन संहिता में, तो ठीक है भाई, आप भजन संहिता को पढ़ें यदि आप वहाँ हैं। भजन संहिता 16:10, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा और ना ही तू अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। उस बात को पढ़ें भाई, जहां पतरस ने प्रचार किया, प्रेरितों के काम पर 2:27, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। भाई, इसके पहले के दो पदों को पढ़ें ताकि आप इसका संदर्भ ले सकें, क्योंकि दाऊद उसके विषय में बोलता है, मैंने प्रभु को सदा अपने सामने देखा है, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मग्न हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक भी न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। अब अगला पद पढ़ें, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा पूरे आनंद से भर देगा। जी हाँ, ध्यान देना। अब मेरे यहोवा विटनेस मित्र, मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहता हूँ। देखा, यदि अधोलोक एक स्थान है, पाताल लोक, परलोक, जो कुछ भी आप इसे कहना चाहते हैं, यदि यह कब्र पर समाप्त हो जाता है, तो फिर उसने क्यों कहा, मैं अपने प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तेरे पवित्र जन को संडे दूंगा। इसके बारे में किस तरह से है, देखा, यहाँ उसकी देह कब्र में थी और उसका प्राण अधोलोक में था, प्रचार कर रहा था जीवित। इसके बारे में क्या, वह फिर से उसके दैविक शरीर में था, उसका प्राण वहाँ उन लोगों के साथ था जो दैविक शरीर में भी थे, और उन्हें गवाही दे रहा था कि उन्होंने धीरज धरते हुए पश्चाताप नहीं किया। वो दूसरे शब्दों में, उसने द्वार पर खटखटाया और जब द्वार सर से खुल गया और वे सारे प्राण जिन्होंने पश्चाताप किया, उसने कहा, मैं स्त्री का बीज हूँ, मैं वो एक हूँ जो यहाँ हनोक, वहाँ स्वर्ग में एक और स्थान। उन तीन स्थानों को अब कभी भी न भूलना, दुष्टों का स्थान, धर्मी का स्थान और स्वयं नरक। देखा, बिल्कुल जैसे स्वर्ग की त्रिएकता, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे पशु की त्रिएकता, झूठा भविष्यवक्ता, वो पशु और उस पशु की छाप, और ये सब याद रखें, ये सब त्रिएकता में है। त्रिएकता एक को सिद्धता बनाती है, एक सिद्धता है, आप सिद्ध हैं, तीन में से एक, प्राण, शरीर और आत्मा, पानी, लहू और नशे। देखो, आप जो कुछ भी थे, आपको एक सिद्धता को बनाने के लिए तीन को लेना होगा। कांच का एक तीन कोनों वाला टुकड़ा लें और उस पर सूर्य के प्रकाश को रखें। आपके पास एक सिद्ध मेघ धनुष होता है। देखो, हर एक चीज आपके पास तीन होना है ताकि एक सिद्ध को बनाएं। और अब याद रखें, जब वो मरा तो उसने पहले जाकर और उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे, और गवाही दी कि वो स्त्री का बीज था, वही वो एक था जिसे हनोक ने अपने हजारों संतों के साथ आते हुए देखा था। उसे उन वचनों की गवाही देनी थी जो नूह के द्वारा प्रचार किए गए थे, और हनोक के द्वारा, और धर्मी के द्वारा, कि वही वो एक था। हर एक जन को इसे पहचानना था। तब वो अधोलोक में चढ़ गया और शैतान से मृत्यु और अधोलोक की चाबियों को लिया, वापस स्वर्ग में आकर और अब्राहम, इजाक और याकूब और धर्मियों को लिया और जिलाए गए, मती 27, और वे कब्र से बाहर आ गए और नगर में प्रवेश किया, और साथ ही सड़क पर लोगों को दिखाई दिए, हालेलुया आप वहाँ हैं अब। लेकिन उसकी देह, जबकि उसका प्राण यहाँ पर खोए हुए की गवाही दे रहा था, यहाँ नीचे शैतान से चाबियों को लेते हुए और वापस आकर और अब्राहम और इजाक को लाता है, उसका प्राण उसमें पड़ा हुआ था, उसका प्राण वहाँ से कर रहा था और उसका शरीर कब्र में पड़ा हुआ था। यही कारण है कि यीशु ने कहा, लोग कहते हैं तो ठीक है, यीशु क्यों कहता है तीन दिन मैं इसे जिलाऊंगा, तीन दिन मैं जिला कर खड़ा करूंगा। वो शुक्रवार दोपहर बाद मर गया, रविवार की सुबह जी उठा। लेकिन देखो ऐसा तीन दिनों के भीतर था, यदि आप शब्दकोश को देखें, क्योंकि वो जानता था कि दाऊद अभिषेक के नीचे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे कहा, मैं अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं दूंगा। वो जानता था कि यह उसी से संबंधित है, वो जानता था कि उसका अर्थ उसी से है, वही वो परमेश्वर का एक पवित्र जन था और वो जानता था कि 72 घंटों में सड़ावट होने लगती है। कहीं तो उन तीन दिनों के भीतर वो वहाँ से फिर से बाहर आ रहा था, क्योंकि वचनों को तोड़ा नहीं जा सकता है, और वहाँ की हर एक प्रतिज्ञा मुझसे संबंध रखती है और आपसे संबंधित है, यह हमारी है। उसने कहा, तुम इस देह को नष्ट भी कर दो और मैं इसे तीन दिनों में जिला उठाऊंगा, क्योंकि उसने कहा, मैं अपने प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ूंगा, न ही मैं अपने पवित्र जन को सड़ने दूंगा। वो जानता था तीन दिनों में वो देह वहाँ से बाहर आ रही थी, वो पूरे तीन दिन नहीं रुका रहा, नहीं श्रीमान, निश्चय ही वो नहीं रुका, वो बस शुक्रवार दोपहर से लेकर रविवार की सुबह तक रुका रहा, उस शरीर की एक भी कोशिका सड़ नहीं सकी, और वो मरा हुआ था और लेप किया हुआ था और पड़ा हुआ था या कपड़े में लपेटा हुआ था और उसे एक कब्र में रखा गया था, उस गर्म दलदली देश में बस कुछ घंटे ही लगते और उसे सड़ावट में जाने के लिए। आप जाते हैं मरण, आप जानते हैं उसकी देह, उसकी नाक अंदर की ओर दब रही है और आदि आदि सड़ावट आने लगती है उस गर्म नम हवा के देश में, और यह सड़ जाता है क्योंकि यह एक देह थी। लेकिन वो जानता था इससे पहले कि कोशिका सड़ जाए, जो परमेश्वर ने दाऊद भविष्यवक्ता के जरिए से कहा, मैं अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं दूंगा। जिस तरह से उसने परमेश्वर के वचन को लिया और इसके द्वारा जिया, अब उसमें से हर एक जन जिसने प्रतिज्ञा की है जो उससे संबंधित है, परमेश्वर ने उसमें से हर एक को पूरा किया, और हर एक प्रतिज्ञा जो विश्वासी से संबंधित है, परमेश्वर इसकी हर एक प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। आमीन। बस निश्चिंत रहे कि यह सत्य है, आमीन। इसलिए उसका प्राण, क्या आप सोचते हैं कि यह नहीं, मुझे क्षमा करें, यीशु का आत्मा उन तीन दिनों में कहां पर था? उसकी देह कब्र में थी, उसका आत्मा अधोलोक में था, वहां नीचे निचले क्षेत्रों में, और वो जी उठा। और मैं यहां एक छोटे से मेरे कथन को जोड़ सकता हूं, जो आपकी बहुत सहायता कर सकता है। जब वो जी उठा, उसका जब वो मरे हुए में से जी उठा, तो उसने अभी तक छुटकारे के कार्य के साथ पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। ये सही है, उसे सारी चीजों को साफ करना था, कीमत चुकाई जा चुकी थी, लेकिन अधोलोक की दहशत, कब्र की दहशत, और यहाँ जब वो मरा, वो सीधा आगे बढ़ा, उसने कभी भी काम करना बंद नहीं किया। जब वो मरा, वो प्रचार को करता रहा। मुझे लगता है कि मेरे अभद्र व्यवहार को क्षमा करें, लेकिन वो कभी भी नहीं रुका। आप कभी भी मरेंगे नहीं, हो सकता है आपकी देह कुछ समय के लिए विश्राम कर रही हो, लेकिन परमेश्वर इसे उठाकर खड़ा करेगा। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा, लेकिन आप अब और नाश नहीं हो सकते। भला परमेश्वर नाश हो सकता है? यह सही है। देखो, उसके मरने के बाद चेलों के लिए मरा हुआ था, वो सो रहा था, जो वो था उन्होंने उसे सुला दिया, जैसे उसने लाजरस के विषय में कहा, मैं उसे जगाऊंगा। परमेश्वर को उसे जगाना था। देखो, वो सीधे वहाँ पर चला गया, उसने प्रचार करना जारी रखा, और उसने यहाँ कैद में प्राणों को प्रचार किया। वो सीधे अधोलोक में चला गया, शैतान से चाबियों को ले लिया, सीधे वापस आकर और फिर से स्वर्ग में प्रचार किया, और तीसरे दिन फिर से जी उठा। अपने प्रेरितों के साथ 40 दिनों तक भेंट की, और 40वें दिन के अंत में वो सीधे ऊपर चला गया, क्योंकि हर एक चीज जो हम पर है, अंधविश्वास और हर चीज, उसने हर एक अंधविश्वास को, हर एक संदेह को काट दिया, और उसके ऊपर उठाए जाने में पृथ्वी से महिमा तक एक प्रार्थना की पंक्ति को बनाया, ऊपर जाकर और महामहिम के दाहिने हाथ पर बैठ गया। वो जय पाने वाला, वो महान जयवंत, पूरी तरह से, मृत्यु उसे रोक न सकी, अधोलोक उसे रोक न सका, धरती उसे पकड़ न सकी। जब वो यहाँ धरती पर था, उसे दिया गया, वो सबसे निचले नगर में चला गया और सबसे निचले लोगों के पास चला गया और उसे सबसे तुच्छ नाम दिया गया था। यही है जो मनुष्य ने उसके साथ किया था। वो येरियो को गया जो सबसे निचला नगर था। छोटे से छोटे मनुष्य को एक पेड़ पर चढ़कर उसकी ओर नीचे देखना पड़ता था। यही है जहाँ मनुष्य ने उसे रखा। वो एक पांव धोने वाला दास था, सबसे गंदा काम जो दिया जा सकता था। वो सबसे नीचे हो गया और उसे सबसे गिरा हुआ नाम दिया गया जो दिया जा सकता था, बाल जबूल, शैतानों का राजकुमार। मनुष्य ने उसे सबसे गिरा हुआ नाम दिया, सबसे निचला स्थान दिया और उसे सबसे निचले नरक के सबसे निचले क्षेत्रों में भेज दिया। परमेश्वर ने उसे ऊपर उठाया और उसे सबसे ऊंचे स्वर्ग में भेजा और हर नाम से ऊपर एक नाम, हालेलुया। क्यों? उसे यहाँ तक स्वर्ग को देखने के लिए भी नीचे देखना पड़ता है। तेरा सिंहासन स्वर्ग के आकाश के ऊपर ऊंचा किया गया है और सबसे महान नाम जिसे कभी स्वर्ग और धरती पर दिया गया है उसके चारों ओर जकड़ा हुआ है। यही है जो परमेश्वर ने उसके साथ किया। मनुष्य ने उसे सबसे नीचे रखा और परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च बनाया। वहाँ वो था, सबसे नीचे से लेकर सर्वोच्च तक। वो सबसे तुच्छ बन गया ताकि वो हमें सर्वोच्च पर ला सके। वो हम बन गया जिससे कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन सके। यही है जहां वो गया था। आमीन। उसका नाम धन्य है। उसने एक मार्ग बनाया कि हम भी किसी दिन आ सकें, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। ओह, कोई आश्चर्य नहीं जब मनुष्य उस दर्शन को पकड़ लेता है। वहाँ कभी भी कोई मनुष्य नहीं हुआ है जो इसे समझा सके। उन्होंने यहाँ तक इसे समझाने की कोशिश की अपने दिमाग को खोकर। यह महान गीत, ओ परमेश्वर का प्रेम कितना बहुतायत और शुद्ध है, कितना अथाह और गहरा है। वो अंतिम पद, या मैं सोचता हूँ पहला पद ऐसा है, यदि हम स्याही से समुद्र को भर देते हैं और आकाश चमड़े का कागज बन जाता है। आप जानते हैं कि ये कहाँ पर पाया गया था? पागलपन पर लिखा, एक पागल संस्था में दीवार पर। कोई भी मनुष्य कभी भी परमेश्वर के उस प्रेम की व्याख्या नहीं कर सकता है। ओह, यह कभी नहीं बताया जा सकता है कि उसने हमारे लिए क्या किया। ओह, आप कैसे एक विशेषता को वहाँ पर रख सकते हैं? यह उसका अनुग्रह है, आरंभ से अंत तक। मैं खो गया था, अधूरा और असहाय, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं था, इसके विषय में कुछ भी नहीं था, और उसने अपने अनुग्रह के द्वारा आकर और हमें बचाया। ओह प्रभु, यही उसका, यही मेरा प्रभु है, यही उसका प्रेम है, यही उसकी भलाई है। अब हमारे पास लगभग 7 मिनट हैं और लगभग 15 प्रश्न हैं। और क्या आप सोचते हैं कि महिलाओं के लिए कलीसिया के बाहर व्यक्तिगत कार्य करना सही है? जी हाँ, यह बस एक प्रश्न है, बस एक, ना ही एक वचन संबंधी प्रश्न है, लेकिन निश्चय ही मैं जवाब दूंगा। जी हाँ श्रीमान, हम सब एक साथ कामगार हैं। स्त्रियों के पास उनका स्थान होता है और निश्चय ही वे करती हैं। जी हाँ श्रीमान, बस वो सारे व्यक्तिगत कार्य करें जो आप कर सकते हैं और परमेश्वर आपको इसके लिए आशीष देगा। तो ठीक है, अब आइए देखें। कृपया त्रिएकता को समझाएं। पुत्र किस तरह से पिता के दाहिने हाथ पर बैठ सकता है, बिचवाई को कर रहा है पिता के लिए, यदि वे दो व्यक्ति नहीं है? तो फिर मित्र, यही एक प्रकाशन है। यदि यीशु ने कहा मैं और मेरा पिता एक है, तब वे दो कैसे हो सकते हैं? समझे? अब वे दो नहीं है। एक बार एक महिला ने मुझसे कहा और मैं इसे समझा रहा था, कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दो हैं, फिर भी तुम एक हो। मैंने कहा लेकिन परमेश्वर और पुत्र इससे भिन्न है। देखो, मैंने कहा आपने मुझे देखा? हाँ। क्या आप मेरी पत्नी को देखते हो? नहीं। मैंने कहा तब पिता और पुत्र की बात भिन्न है। यीशु ने कहा जब तुम मुझे देखते हो तुम पिता को देखते हो। देखा, पिता और पुत्र, पिता सर्वशक्तिमान यहोवा था, परमेश्वर एक भवन में वास करते हुए जिसे यीशु मसीह कहा गया, जो कि परमेश्वर का अभिषिक्त पुत्र था। यीशु एक मनुष्य था, परमेश्वर एक आत्मा है। और किसी भी मनुष्य ने कभी भी परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन पिता के इकलौते उत्पन्न ने उसे घोषित किया। वो उसका व्यक्तित्व, उसका अस्तित्व, उसकी दैविकता, जो कुछ भी वो था, वो परमेश्वर था। वो कुछ भी कम नहीं था या परमेश्वर से अधिक कुछ भी नहीं था, फिर भी वो एक मनुष्य था। वो एक मनुष्य था, एक घर जिसमें परमेश्वर वास करता था। ये ठीक बात है, वो परमेश्वर का रहने का स्थान था। अब यदि आप उस पर कुछ वचनों को चाहते हैं, भाई नेविल, क्या आप मेरे लिए संत मरकुस 14:62 को निकालेंगे, और बहन वुड, आप मेरे लिए इफिसियो 1:20 को निकालें। किसी और के पास बाइबल है तो अपना हाथ उठाएं। बहन अर्नोल्ड, आपके पास एक वहाँ पीछे है, तो ठीक है, आप मेरे लिए प्रेरितों के काम 7:55 को निकालें। ठीक है, मरकुस 14:62 भाई नेविल, और बहन वुड, इफिसियो 1:20 है, प्रेरितों के काम 7:55 बहन अर्नोल्ड, तो ठीक है, क्या आपने इसे निकाला है भाई नेविल? तो ठीक है, अब पढ़ें। यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को देखोगे जो सर्व सामर्थ के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है और आकाश के बादलों के साथ आ रहा है। तो ठीक है, अब वहाँ पहले वाक्यांश को देखें। यीशु ने कहा, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ कौन था? सारे संसार में कभी कोई एक मनुष्य नहीं हुआ जो इसका अनुवाद कर सके। यहाँ तक कि आप जो शब्दकोश और आदि आदि को पढ़ते हैं, वहाँ कभी भी कोई मनुष्य नहीं रहा है जो समझ सके। ये है JVHU, और यहाँ तक कि इब्रानी विद्वान भी इसका उच्चारण कभी नहीं कर सके। वहाँ वो जलती हुई झाड़ी, उस दिन जब उसने मूसा से भेंट की, यह था JVHU, इसलिए उन्होंने इसका उच्चारण किया JOH यहोवा, लेकिन यह यहोवा नहीं है, JVHU। देखा, कोई नहीं जानता। और आप कहते हैं, तो ठीक है, मूसा इसे नहीं समझ सका। उसने कहा, मैं किसके लिए बता सकता हूँ? उसने कहा, कहना मैं हूँ ने तुम्हें भेजा है, मैं हूँ। अब देखो, मैं हूँ एक वर्तमान काल है, ना ही मैं था या मैं होऊंगा, मैं हूँ। अब उसने कहा, ये सारी पीढ़ियों में से होते हुए स्मरण रहेगा, मैं हूँ। अब यीशु की ओर देखें, जो उस दिन वहाँ पर्व पर खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, अब हम जानते हैं कि तुम पागल हो। सही शब्द, तुम सनकी हो, सनकी पागल होता है। हम जानते हैं कि तुम पागल हो, तुम एक सामरी हो, तुम्हारे पास एक शैतान है। संत यूहन्ना 6:6। और उसने कहा, अब तुम कहते हो कि तुमने अब्राहम को देखा है, और तुम 50 वर्ष से अधिक उम्र के भी मनुष्य नहीं हो। हो सकता है वो अपने समय पर थोड़ा बूढ़ा दिखाई देता होगा, लेकिन वो केवल 30 वर्ष का था, लेकिन उसका काम। कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम 50 वर्ष से अधिक उम्र के मनुष्य भी नहीं हो, और कहते हो कि तुमने अब्राहम को देखा है। हम जानते हैं कि अब तुम पागल हो। देखा, उसने कहा, इसके पहले कि अब्राहम था, मैं हूँ, मैं हूँ, वो महान मैं हूँ था। यहाँ वो इन यहूदियों को फिर से बता रहा है, देखो मैं हूँ, और जब तुम मुझे सामर्थ के दाहिने हाथ पर आते हुए देखते हो, क्या यह सही है? इसे फिर से पढ़े भाई। और तुम मनुष्य के पुत्र को सामर्थ के दाहिने हाथ पर बैठे हुए और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। अब आपका वचन पढ़ें, बहन वुड। जी हाँ महोदया, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर और उसे उसके अपने दाहिने हाथ पर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तो ठीक है, आपका वचन पढ़े बहन। देखो, यह बिल्कुल वैसा ही है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर। अब आप देखते हैं, परमेश्वर के पास एक बड़ा दाहिना हाथ नहीं हो सकता है। देखो, और यीशु उसके दाहिने हाथ पर खड़ा है। दाहिने हाथ का अर्थ होता है अधिकार। देखा, केवल उदाहरण के लिए, क्या हो यदि मुझे कलीसिया का पूरा अधिकार होता था, या मैं किसी प्रकार का बिशप होता था और भाई नेविल ने मेरा स्थान ले लिया, वो मेरा दाहिना हाथ होता। देखिए, इसका अर्थ है कि वह मेरे दाहिने हाथ पर होता। अब यीशु सामर्थ के दाहिने हाथ पर है। अब वो ऐसा कहता है, या इफिसियों में जब वो इसे समझा रहा है, वो सामर्थ के दाहिने हाथ पर है, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ, उसने कहा, उसके पुनरुत्थान के बाद मेरे हाथों में दी गई है। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ है, इसलिए तुम जाकर और सारे राष्ट्रों को सिखाओ, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें उन सब बातों का पालन करना सिखाना जिसकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। देखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ कहाँ है वो? यदि वहाँ उसके अलावा कोई और ईश्वर है, तब तो वो सामर्थ्यहीन है। देखो, कोई और परमेश्वर नहीं हो सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ उसके हाथ में है। तो आप देखते हैं, वो दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ है। जैसा कि उस व्यक्ति ने सवाल पूछा, इसका मतलब यह नहीं है। अब देखो, देह परमेश्वर एक आत्मा है। जी हाँ, कितने ये समझते हैं? कहें आमीन। परमेश्वर एक आत्मा है, यीशु एक मनुष्य है, और यीशु परमेश्वर देहधारी हुआ था। यीशु था, हम कभी भी परमेश्वर को नहीं देख सकते थे। देखो, वो एक आत्मा है, आप आत्मा को नहीं देख सकते। किसी भी मनुष्य ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है, कोई भी मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सका। और मुझे ये कहने दो, आपने मुझे कभी नहीं देखा, आपने मुझे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा है, और आप मुझे कभी भी नहीं देख पाएंगे। ये सही है, आप इस शरीर को देखते हैं जो इस व्यक्ति को घोषित करता है जो यहाँ पर है। अब इस शरीर के पास अनंत जीवन नहीं है, लेकिन आत्मा के पास अनंत जीवन है। यह देह वापस चली जाएगी, लेकिन यह इसकी समानता में फिर से आगे आएगी, जैसे गेहूं का एक दाना जो जमीन में चला जाता है। मसीहत पुनरुत्थान पर आधारित है, न कि किसी के बदले स्थान पर रखना। पुनरुत्थान, वही यीशु नीचे गया, वही यीशु वापस ऊपर आया। यदि आप लाल सिर वाले नीचे जाते हैं, तो आप लाल सिर वाले वापस ऊपर आते हैं। यदि आप काले सिर वाले नीचे जाते हैं, तो आप काले सिर वाले ही ऊपर आते हैं। देखो, यह एक पुनरुत्थान है। जब आप खाने के लिए जाते हैं, मैंने डॉक्टर से यह पूछा, ज्यादा समय नहीं हुआ। मैंने कहा, ऐसा क्यों है? जब मैं 16 वर्ष का था, हर बार जब मैं खाता हूँ, मैं अपने जीवन को नया करता हूँ। कहा, यह ठीक बात है। आप हर बार नई कोशिकाओं को लेते हैं, मांस बनाते हैं, मतलब भोजन लहू की कोशिकाओं को बनाता है, और वो लहू कोशिका आपको मजबूत बनाती है। इसी तरह से आप जीते हैं। तब हर बार किसी को तो मरना होता है, आपके जीने के लिए हर दिन कुछ तो मरता है। यदि आप मांस खाते हैं, तो गाय मरती है, या कुछ भी आप खाते हैं, और मछली मरती है, या गेहूं मरता है ताकि रोटी को बनाए, आलू मरता है जिसने आलू को बनाया। और जीवन का हर एक रूप आप केवल मरे हुए वस्तु के जरिए से ही जी सकते हैं, और आप केवल अनंतता में जी सकते हैं, क्योंकि कोई तो मरा है। यीशु ना ही इसलिए कि आप कलीसिया से जुड़ गए हैं, इसलिए नहीं कि आपने बपतिस्मा लिया था, इसलिए नहीं कि आपने मसीहत होने का दावा किया है, क्योंकि आपने यीशु मसीह के जीवन को स्वीकार किया है, जो लहू लुहान था, लहू जो आपके लिए बहाया गया था, और आपने उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। अब ध्यान दें, मैं ये पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इसे देखो, ये सुंदर है। हो सकता है मैंने इस पर पहले सिखाया हो, मैं नहीं जानता। यहाँ हर जगह प्रचार करते हुए आप भूल जाते हैं कि आपने एक बार बताया है, कुछ स्थानों पर क्या कहा है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है? अब मैं समझता हूँ बेन स्मिथ, मैं नहीं जानता कि मैं भाई फ्लेमिन को बहुत पहले जानता था या नहीं, और त्रुफेना, मुझे वो याद है जब वो एक छोटी लड़की थी। आपको मैं याद होऊंगा जब मैं हुआ करता था, छोटा सा, नाटा, भारी, काले लहराते बाल, मैं बॉक्सिंग किया करता था। ओह, मैंने सोचा मैं संसार का एक प्रचलित व्यक्ति हूँ। ओह, मैंने सोचा मुझे कोई पछाड़ नहीं सकता। नहीं श्रीमान, लेकिन मैं इस पर मूर्ख बन गया, आप देखिए। लेकिन मैं अब मैंने तब सोचा, ओ प्रभु, मैंने सोचा यदि आप इस चीज को मेरी पीठ पर रख सकते हैं, तो मैं इसके साथ सड़क पर चलकर जाता। निश्चय ही मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है, और हर बार जब मैं खाता हूँ, मैं हर समय बड़ा और मजबूत होता जाता हूँ। हर बार मैं नया जीवन डालता। मैंने पत्ता गोभी, आलू और बीन्स और मांस खाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आज खाता हूँ, और मैं हर समय मजबूत और बड़ा होता गया। और जब मैं लगभग 25 वर्ष का होने जा रहा था, मैं उस समय की तुलना में अब बेहतर खाता हूँ। आप सभी मुझे जानते हैं, ये जानते हैं, मैं अब अच्छा खा सकता हूँ, हम सब अच्छा खा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है भाई इगन? तब यदि मैं अब भी अच्छा खाना खा रहा हूँ, इसमें से अधिक बेहतर विटामिन खाता हूँ, और हर चीज, और जितना अधिक मैं खाता हूँ, मैं धीरे धीरे कम होता जाता हूँ, और अब मैं एक झुके हुए कंधे वाला मनुष्य होते जा रहा हूँ, गंजे सिर वाला, और बाल सफेद हो रहे हैं, और हाथ झुर्रीदार हो रहे हैं, चेहरा अंदर दब रहा है, कंधे नीचे की ओर झुक रहे हैं, सुबह को उठना कठिन होता है और ओह प्रभु ऐसा क्यों है? यदि मैं अपने जीवन को हर बार जब मैं खाता हूँ नया बनाता हूँ तो फिर ऐसा क्यों होता है? यदि मैं एक घड़े में से पानी को एक गिलास में डाल रहा हूँ और यह आधा भरा हुआ होता है और फिर ऊपर आने की बजाय हर समय नीचे की ओर जाना आरंभ करता है और जितना अधिक मैं उढ़ेलता हूँ यह तेजी से नीचे जाता है, आप वहाँ हैं। और यदि आपको करना पड़े तो आप इसे वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं कर सकते हैं। यह पुस्तक ही केवल एक चीज है जो साबित करती है कि परमेश्वर ने इसे ठहराया है। यह एक नियोजन है जिसमें परमेश्वर ने हमें आते हुए देखा है। आप बुजुर्ग पुरुष और आप बुजुर्ग महिलाएं, हो सकता है आप में से किसी के पति और आपकी पत्नियां चले गए हों जो कुछ भी चिंतित नहीं करता है। हालेलुया, वे बस पूरी तरह से उस ओर पर्दे के पार प्रतीक्षा कर रहे हैं और वे फिर से आपके साथ होने की लालसा रखते हैं। यह सही है, निश्चय ही वे रखते हैं, वे फिर से एक साथ होने की लालसा रखते हैं। बाइबल ने कहा कि वे प्राण वेदी के नीचे चिल्ला रहे हैं, प्रभु कब तक? देखा, वे अपनी सही अवस्था में नहीं है। परमेश्वर ने हमें कभी भी दूत नहीं बनाया, उसने हमें पुरुष और स्त्री बनाया। हम हमेशा पुरुष और स्त्री बने रहेंगे क्योंकि हम परमेश्वर की अपनी खुद की बुद्धिमत्ता की उपज हैं। हम हमेशा ही पुरुष और स्त्री बने रह सकते हैं। लेकिन ये क्या करता है? देखो, हो सकता है आप सोचते हैं कि जब आप वेदी पर चलकर गए, आप और पति, कहा कि हम एक दूसरे को वैध विवाहित पत्नी होने के लिए स्वीकार करते हैं और इस विवाह के पवित्र दशा में एक साथ रहेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह और इत्यादि और आपकी सारी गवाही जो आप देते हैं और आपने जो प्रतिज्ञा की है, पहली बात जो आप जानते हैं, ध्यान देना आरंभ करते हैं, आप दोनों, वो सीधा था और बाल चमकदार थे और माँ और उसकी सुंदर छोटी बुरी आँखें या नीली आँखें या ये जो कुछ भी था, ओह आपने उसे किस तरह से देखा? आप बाहर चल कर गए, आपने पिता की ओर देखा, अब उनके कंधों को पीछे की ओर सीधा करें और कुछ समय के बाद वे गिरने लगते हैं, माँ के बाल सफेद हो जाएंगे, गठिया हो जाएगा और आधी आधी, और थोड़ी देर के बाद वो चली जाती है या पिता दूर चले जाते हैं। यह क्या था? जब परमेश्वर ने आपको वहाँ खड़े हुए देखा तो उसने कहा ऐसा ही है, इसी तरह से मैं तुम्हें चाहता हूँ, ठीक है मृत्यु तुम आ जाओ, लेकिन तुम उन्हें तब तक नहीं ले सकती जब तक मैं तुम्हें अनुमति नहीं देता। ओह ओह, मैं अय्यूब के बारे में सोचता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर नीचे की ओर देख रहा था। अय्यूब जानता था कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है और ध्यान दें, वो आपको नहीं ले सकता। उसने कहा तुमने उसे अपने हाथों में लिया है लेकिन तुम उसके जीवन को नहीं लेना। और फिर पहली बात जो आप जानते हैं, कंधे झुकना आरंभ हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद आप चले जाते हैं। ये क्या हुआ था? अब पुनरुत्थान में ऐसी एक भी चीज नहीं होगी जो मृत्यु को दर्शाती हो, वहाँ एक भी चीज नहीं हो सकती है जो इस धरती को दर्शाती हो, जो देखो आप परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ऊपर आ रहे थे, आपके पास जीवन था, तब मृत्यु आ गई, आपको नीचे ले जाती है, उसी भोजन को और हर चीज को खाते हुए उसी तरह का पानी पी रहे हैं, हर एक चीज, लेकिन मृत्यु अंदर आ गई, लेकिन तस्वीर पहले से ही तैयार है। हालेलुया, पुनरुत्थान में आप फिर से जीवन होंगे और वहाँ कोई मृत्यु नहीं होगी या मृत्यु की कोई स्वरूपता नहीं होगी या बुढ़ापा या अपंगता या कुछ भी, अविनाशी, हम उसकी समानता में खड़े होंगे हमेशा के लिए सिद्ध। हालेलुया, ओह मैं ये किसी को भी जय जयकार करने को लगाता है, विशेष रूप से जब आप मेरी उम्र में पहुंचते हैं। मेरी उम्र है, मैं सोचता हूं जब आप इसके बारे में सोचते हैं हमेशा से कहीं अधिक, आप बस उस बदलते हुए ढांचे पर हैं, आप देखते हैं वो, आप सोचने लगते हैं ये सब क्या है, मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पीछे देखता हूँ, मैं सोचता हूँ ओ प्रभु तो ये कहाँ चला गया है, प्रभु यहाँ मैं 48 वर्ष का हूँ, दो और वर्ष मैं 100 के आधे वर्ष का हो जाऊंगा, मैं केवल जरा उन कुछ प्राणों की ओर देखें जिन्हें मैंने जीता है, मैं लाखों और प्राणों को जीतना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरी सहायता करे। मुझे यहाँ तक अपने आप पर शर्म आती है कि छुट्टी पर घर आया हूँ सोचकर कि ओह फसल पक चुकी है और मजदूर थोड़े हैं, लाखों पाप और लज्जा में हर दिन मर रहे हैं, उनकी पुकार को सुने। मैं वहाँ रात को बिस्तर पर जाता हूँ और उन बेचारे छोटे मूर्ति पूजकों को उस और देश में चिल्लाते हुए सुनता हूँ, किस तरह से भी हजारों की संख्या में लोग आए थे मेरे पीछे पीछे और वहाँ हवाई अड्डे पर खड़े हुए थे जहाँ उन्हें वहाँ उन्हें पीछे रोके रखने के लिए नागरिक सेना को रखना पड़ा था केवल यीशु मसीह की कहानी को सुनने के लिए। और यहाँ हम विनती कर सकते हैं और अखबार में विज्ञापन देते हैं और हर चीज और उनके बैठने के लिए बहुत ही बेहतरीन स्थानों को लेते हैं, बेहतरीन गीत गाने वालों के साथ सबसे अच्छा मनोरंजन वे आएंगे और ओह तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा था हालांकि ये मेरे विश्वास से संबंधित नहीं है। ओह प्रभु यह कितने समय तक टिक सकता है, यह नहीं, यह सही नहीं है। और यहाँ पर हम सैकड़ों और अरबों टन खाने की चीजों को कूड़ेदान में फेंक रहे हैं और जबकि वे लोग इसे खुशी से ग्रहण करेंगे और वे उसी तरह से धरती की सृष्टियां हैं जैसे हम हैं। ओ हम तो यह बहुत लंबे समय तक इस तरह का कार्य नहीं चल सकता। तो ठीक है, अब पिता कौन है? पिता और पुत्र एक हैं। देखो पहला यूहन्ना 5:7 में इसने कहा वहाँ तीन हैं जो स्वर्ग में गवाही को देते हैं, पिता, वचन जो कि पुत्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं। धरती पर तीन हैं जो गवाही देते हैं जो कि जल, लहू और आत्मा हैं। यही तीन तत्व हैं जो मसीह की देह में से आए। उन्होंने उसके बगल में भाले को छेदा, पानी निकला, लहू निकला, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूँ। आप वहाँ हैं, यही तीन तत्व हैं। ये तीन एक नहीं है लेकिन वे एक में सहमत हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा पहला यूहन्ना 5:7 कहता है ये तीनों एक हैं। जल, लहू और आत्मा एक में सहमत होते हैं, न ही एक लेकिन एक में सहमत होते हैं। तो पिता और केवल एक चीज जो देह कर सकती है जब परमेश्वर स्वयं को देख सकता है कि दंड में से होते हुए यह देह निकलती है, वहाँ एक मध्य, ठीक वहाँ पर मध्यस्थता है। आप देखिए वहाँ पर जब वो देखता है कि लहू उसके और न्याय के बीच में खड़ा है, यहाँ उसका वचन है जो कहता है जिस दिन तुम इसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। और यहाँ यीशु ने कहा मैं, लेकिन मैंने उनका स्थान ले लिया, देखो मैंने उनके स्थान को ले लिया है। उस रात को मेरी बताई कहानी याद है जहाँ मैंने उस महिला के बहुत बुरे दर्शन को देखा जो वहाँ कमरे में था और मैं उसे दोषी ठहरा रहा था, कहा परमेश्वर आप उस स्थान को क्यों नहीं उड़ा देते। तब उसने मुझे दिखाया देखो, और मैं उसके पास चलकर गया और उसे बताया कि क्या हुआ था। अब यह मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं वचनों के अनुसार कि यहूदी लोग कलीसिया के रैप्चर से ठीक पहले मसीह को स्वीकार करेंगे? मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि कलीसिया का रैप्चर, ये मेरा अपना विचार है देखिए, और यदि हमारे पास समय होता तो हम इसे पूरा ले लेते, लेकिन यह अब 9 बज चुके हैं। देखिए मैं विश्वास करता हूं कि यहूदी लोग मसीह को उसके दूसरे आगमन पर ग्रहण करेंगे। अब याद रखें ताकि व्यक्ति को यह पता चले हमारी आंखें अंधी हो गई थी या उनकी आंखों को अंधा कर दिया गया था जिससे कि हम अपनी दृष्टि को पा सकें। हर कोई जानता है वचन इसके विषय में बताता है, क्या यह सही है? पौलुस हमें बताता है कि हमारे कि हम अंधे हुए, कि यहूदियों को अंधा कर दिया गया जिससे कि हम मसीह को ग्रहण कर सकें। देखा, और हम जंगली जलपाई के पेड़ हैं जिसे लेपालकपन के द्वारा पेड़ में साटा गया है। अब यहाँ पर मेरा विचार है जिसे मैं बस आपको देने जा रहा हूँ। वे मुझसे पूछते हैं क्या आप सोचते हैं? अब यहाँ जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि यह बात जगह लेगी, मैं नहीं जानता यह जो भी है, मैं निश्चित हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया के द्वारा हम वहाँ पर होंगे। देखो उसके अनुग्रह के द्वारा यह जो कुछ भी है, मैं हो सकता है इसे समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ है जो मैं सोचता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम अंत समय पर हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य जातियों का युग ठीक अभी समाप्त हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम नजदीक हैं। और अब यहूदी लोग, यहाँ दो बातें रही हैं जो हमेशा ही यहूदियों के साथ गलत रही हैं। वे अंधे थे, वे इसे नहीं देख सके, और इसलिए अन्य जाति लोग एक बात के लिए बहुत सी बार, मैंने बेंटन हार्बर में एक यहूदी से बात की बहन स्मिथ, और आप जानते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा वहाँ उन इसराइल में से एक पर, वहाँ इसराइल के स्थानों, यह प्रश्न एक अंधे मनुष्य की चंगाई के विषय में है। और उसने कहा आप यहूदियों को नहीं काट, आप परमेश्वर को तीन टुकड़ों में काट कर और उसे एक यहूदी को नहीं दे सकते, उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा बनाते हैं। कहा आप एक यहूदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम कोई मूर्ति पूजक नहीं है। कहा हम एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। देखा, और आप परमेश्वर को तीन बनाते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। निश्चय ही आप वहाँ एक यहूदी को अंधा करते हैं, क्योंकि वो बेहतर जानता है, वो इससे बेहतर जानता है। ये आपको एक मूर्ति पूजक बना देता है। ये बस उतना ही निश्चित है जितना कि मूर्ति पूजक होते हैं। आपके पास तीन ईश्वर हैं, आपको उन्हें एक ही परमेश्वर बनाना है। यह तीन ईश्वर नहीं है, यह एक ही परमेश्वर के तीन कार्य स्थान है। देखो, परमेश्वर ने पितृत्व में काम को पूरा किया, उसने पुत्रत्व में काम को पूरा किया, और वो अब पवित्र आत्मा के समय काल में काम को पूरा करता है। यह स्वयं वही परमेश्वर है। यही कारण है कि हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का आदेश दिया गया था, क्योंकि ना ही एक नाम में ना ही नामों में या पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। देखो, एक ही परमेश्वर की पहचान देते हुए जो कि मसीह है। देखो, यही तो ये है, यह किसी और तरीके से नहीं हो सकता है। देखा, और वचन, और फिर यदि हमारा प्रकाशन गलत है, तब तो पतरस और बाकी के प्रेरितों ने गलत बात को सिखाया, क्योंकि बाइबल में हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। एक भी व्यक्ति ने कभी भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं लिया था। यह एक कैथोलिक सिद्धांत है। मैं आपको उनके अपने शब्दों के द्वारा साबित कर सकता हूँ, और उनके अपने शब्दकोश और हर एक चीज के द्वारा साबित कर सकता हूँ। यह एक कैथोलिक मत सिद्धांत है, और ना ही एक बाइबल की शिक्षा, और ना ही कोई मनुष्य। यहाँ तक कि इंग्लैंड के राजा ने भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, अंतिम प्रेरित की मृत्यु के लगभग 600 वर्ष के बाद, जब इसे उस वक्त इंग्लैंड भी नहीं कहा जाता था, इसे एंजल लैंड कहा जाता था। यही वो नाम है जहाँ से यह आया है। उसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, जिसने उसे परिवर्तित किया। वो एक छोटी सी चिड़िया थी, जब यदि मैं सोच सकता हूँ, ना ही संत एंजेलो, अब उसका नाम क्या था, अगबूस, संत अगबूस, मैं सोचता हूँ कि यही था। मैं अब मुझे पक्का नहीं है कि वही नाम होगा, लेकिन जो भी है, वो वहाँ पर गया और उन्होंने इसमें से कुछ को लिया। उन्होंने उन्हें दूत कहा, क्योंकि लोग और अंशुरी लोग और आदि आदि अश्वेत सांवले रंग के थे, और इन अंग्रेजों के लंबे सफेद घुंघराले बाल, सुनहरे सिर वाले एंग्लो सैक्सन, आप जानते हैं, नीली आंखों वाले, और उन्होंने कहा वे दूतों के समान दिखाई पड़ते थे, और इसलिए उन्होंने इसे दूत का देश कहा। और वो प्रभु का सेवक वहाँ पर गया और अपने राजा को प्रचार कर रहा था, और वे वहाँ पर एक बड़ी खुली आग में बैठे हुए थे। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं इसका इतिहास पढ़ रहा था, और एक छोटी चिड़िया उजाले में उड़ी और वापस बाहर चली गई, और राजा ने सवाल को पूछा, वो पक्षी कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया। देखा, वो उजाले के अंदर आया और हमने उसे देखा, और वो वापस अंधकार में चला गया। क्या मनुष्य इसी प्रकार से नहीं जाता है, उसने कहा। लेकिन वो क्या था इससे पहले कि वो यहाँ आ सके? प्रचारक ने कहा, देखो, इस बात ने राजा को छू लिया, और अगली सुबह उसे और उसके घराने ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। यह सही है। तब क्या पहला मनुष्य जिस पर कभी छिड़काव किया गया था, या कभी किसी और तरह से बपतिस्मा दिया गया था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, यह कैथोलिक कलीसिया में था? अब तक का पहला छिड़काव कैथोलिक कलीसिया में हुआ था। अब तक की पहली बार पानी का उंडेला जाना कैथोलिक कलीसिया में हुआ था। प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने हमेशा ही बपतिस्मा लिया, बाइबल में प्रेरितों ने यीशु मसीह के नाम में डुबाने के द्वारा लिया था। हर कहीं पर, बस एक स्थान को दिखाएं जहां उन्होंने कुछ और लिया था। देखो, अब इस महान समय में यहूदी नहीं कर सकते। मैंने उस रब्बी से पूछा, मैंने कहा, रब्बी, क्या आपके लिए भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना कठिन होगा? उसने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता हूँ। मैंने कहा, यशाया 9:6 में उसका क्या अर्थ था, हमारे लिए एक पुत्र जन्मा है, वो किसके विषय में बोल रहा था? उसने कहा, वो मसीहा के लिए बोल रहा था। मैंने कहा, तब क्या मसीह जन्म लेगा? जी हाँ, वो जन्म लेगा। मैंने कहा, तब यदि उसे जन्म लेना है, तो उसके पास एक माँ होगी। हाँ, उसके पास एक माँ होनी है, और उसका एक पिता भी होना है, उसने कहा। मैंने कहा, बिल्कुल सही है। और क्या आपके लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा नहीं होगा कि वो परमेश्वर, महान यहोवा, जिसने लाल समुद्र को खोला, क्या वो इस बालक को निष्कलंक जन्म के द्वारा जन्म नहीं दे सकता? देखा, वहाँ वो था। उसने कहा, लेकिन आप उसे तीन ईश्वर नहीं बना सकते। मैंने कहा, वो तीन ईश्वर नहीं है। मैंने कहा, मसीह का परमेश्वर से क्या संबंध होगा? उसने कहा, वो परमेश्वर होगा। मैंने कहा, अब आप समझ गए, अब आपने इसे पकड़ा, वो परमेश्वर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तब उसने मुझे बताने की कोशिश की, कहा तो ठीक है, यह मनुष्य एक चोर था। यह जो नाजरत का यीशु था वो एक चोर था। मैंने कहा, रब्बी वो भला कैसे एक चोर था? तो ठीक है, उसने कहा, आपके अपने वचनों में कहा गया है कि वो सबत के दिन मकई के खेत में गया और मकई को ले लिया। मैंने कहा, अब रब्बी आप बेहतर जानते हैं, इस वचन के बारे में अधिक जानते हैं। आपका अपना वचन कहता है कि यह वैध बात है, एक मनुष्य के लिए यह उचित है कि वो जाकर और जितना चाहे उतना मकई खाए, लेकिन इसे उसके बस्ते में न डाले और इसे बाहर न ले जाए। आपका अपना नियम कहता है, रबी। और वो वहाँ थोड़ी देर खड़ा हुआ था, उसने इसका विश्वास किया क्योंकि उसने गवाही दी। उसने कहा, थोड़ी देर बाद उसने कहा, तो ठीक है, किस कारण से जॉन की आंखें? कहा, आपने इसे कैसे किया? मैंने कहा, यीशु मसीह के नाम में। वो नहीं जानता था। कहा, तो ठीक है, आप परमेश्वर को तीन टुकड़ों में नहीं काट सकते। मैंने कहा, वो यहोवा था जो देह में प्रकट हुआ था। रब्बी, यही तो वो था, वो देह में यहोवा था। उसका खुद का मनुष्य नाम वो छुटकारे का नाम था, क्योंकि आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि एक मनुष्य को बचाया जा सके, केवल उस मानव छुटकारे के नाम के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह। यह सही है, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, वो हमेशा परमेश्वर रहेगा। यह बिल्कुल सही बात है, प्रभु यीशु मसीह। अब मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य जाति कलीसिया जल्द ही अन्य जाति कलीसिया की देह को पूरा करेगी। द्वार जो बीच में, यीशु ने कहा मत्ती 24 में, मैं उस एक वचन को एक मिनट के लिए लूंगा। उसने कहा, वे यरूशलेम की शहरपना को रौंदेंगे जब तक अन्य जाति का समय काल समाप्त नहीं हो जाता। अब ध्यान दें, यह हमारे प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया था मत्ती 24 में कि यहूदियों को तस्वीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दानियल ने कहा वहाँ पीछे पुराने भविष्यवक्ताओं में, उसने कहा कि वहाँ यहूदियों के लिए अब भी 70 सप्ताह होंगे और मसीह आएगा, वो राजकुमार, और 70वें सप्ताह के मध्य में भविष्यवाणी करेगा, जो कि 7 वर्ष होते हैं, वो बीच में ही काटा जाएगा। देखो ये कितना सिद्ध था, यीशु ने ठीक 3.5 वर्ष प्रचार किया और क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन वहाँ तीन, जो ठीक यहाँ इस दूसरे प्रश्न पर आते हैं, अभी भी उनके लिए 3.5 वर्ष बाकी हैं, उन यहूदियों के लिए इसे होना ही है। अब यदि आप प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय को लेंगे, यूहन्ना ने इसराइल के 12 गोत्रों में से 144,000 यहूदियों को मोहरबंद देखा। देखा मेरा क्या मतलब है, अभी घटित होने से पहले आगे आने को है। अब देखो ये कितना सुंदर है। इससे पहले कि हम अब बंद करें, ध्यान दें कि यह कैसे घूमता है। अब वे यहूदी अंधकार में आ चुके हैं। अब यहाँ ये यहूदी, उनमें से अधिकांश यहाँ हैं। बस आप जानते हैं कि वे कैसे हैं। उनके पास संसार की धन संपत्ति है और वे तो बस पैसे वाले लोग हैं, और यही सब है जो आप इनमें से बना सकते हैं। देखो, और बहुत ही घमंडी और बेरुख किस्म के हैं और नहीं सुनते हैं। लेकिन यह वे लोग नहीं है जिनके बारे में वो बात कर रहा था, यदि आप इस पर ध्यान देंगे। अब अन्य जाति, अब देखो इन यहूदियों के लिए अब भी 3.5 वर्ष बाकी हैं। अब यीशु ने कहा कि यरूशलेम नगर अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा जब तक अन्य जाति का समय काल। अब आप लोग जो समय काल में विश्वास नहीं करते, इस विषय में क्या है? जब तक अन्य जाति का समय काल समाप्त नहीं हो जाता, और जब अन्य जातियों का समय काल समाप्त हो जाता है, अन्य जातियों का समय पूरा हो जाता है, तब यह नगर वापस यहूदियों को दे दिया जाएगा। और यीशु यह कहने के लिए आगे बढ़ा कि वो पीढ़ी, कहा जब तुम बाहर जाकर और अंजीर के पेड़ को अपनी कोपले निकालते हुए देखते हो और दूसरे सारे पेड़ विकसित हो रहे हैं, कहा तुम जानते हो कि ग्रीष्म ऋतु नजदीक है। कहा इसी प्रकार जब तुम इन बातों को घटित होते हुए देखते हो, तो जान लो कि समय निकट है, द्वार पर है, और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी न हो जाएं, तब तक यह पीढ़ी न टलेगी। अब उन्होंने इस पीढ़ी में इस बात के लिए देखा, यही है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। बिल्कुल नहीं, सुनना, उसने कहा जिस पीढ़ी ने अंजीर के पेड़ को अपनी कोपले निकालते हुए देखा, अब देखो उसने कहा अंजीर का पेड़ और दूसरे सारे पेड़। अब दूसरे शब्दों में उस समय पर एक विश्वव्यापी बेदारी होगी। अब इस भविष्यवाणी को देखें, यह किस तरह से काम करती है और बस सिद्धता में मिश्रित हो जाती है। अब ध्यान दें, दूसरे सारे पेड़ अपनी कोपले निकाल रहे हैं, फिर से जीवित हो रहे हैं। एक पेड़ जब यह अपनी कोपले निकाल रहा होता है तो फिर से जीवित हो जाता है। क्या यह सही है? अब कोई भी जानता है, एक भविष्यवाणी का शिक्षक, कि अंजीर का पेड़ हमेशा से यहूदी रहा है। हम ये जानते हैं, यह यहूदी है। अब वो और योएल को देखो, जब उसने इसे वहाँ पर लिया, उसने कहा, जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा। यदि आप ध्यान दें, यह वही कीड़ा है जो भिन्न भिन्न चरणों में है। गाजाम, अरबे, येलेक, यह सब एक ही कीड़ा है। यह बस इसके जीवन के विभिन्न चरण हैं। अब देखो, वही कीड़ा वहाँ पीछे उस यहूदी पेड़ पर खाने लगा, इसे काट दिया और इसने खाना आरंभ किया और खाया और खाया और खाया, इतना तक कि यह इसे एक ठूंठ पर ले गया। लेकिन फिर उसने कहा, मैं लौटा दूंगा। यहोवा यो कहता है, सब वर्षों तक जो टिड्डियों ने खा लिया है, और मैं अपने लोगों को आनंदित करूंगा। देखा, अब पेड़ को खा लिया गया है, अन्य जातियों को इसमें साटा गया था। यह सच है, तो ठीक है, हमें अवश्य ही फल लाना है। अब जब अंत का समय आता है, जब हम अंत की ओर बढ़ रहे होते हैं, यदि मैं इसे ठीक से देखता हूँ, सुसमाचार यह है, वहाँ एक महान बेदारी जगह लेना चाहिए। अब क्या आप जानते हैं कि यहूदियों का झंडा संसार का सबसे पुराना झंडा है, और यह 2000 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उससे भी अधिक, लगभग 2500 वर्षों से। यहूदियों का झंडा, वह छह कोनों वाला दाऊद का तारा, 2500 वर्षों तक कभी नहीं लहराया गया, बाबुल के ले जाने के बाद से लेकर। और अब क्योंकि रोमन साम्राज्य ने उन्हें ले लिया था, और मसीहा आया और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, और धरती की चार हवाओं में तितर बितर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, मई के छठवें दिन 1946 को वो झंडा फिर से यरूशलेम पर वापस आ गया। क्या आप जानते हैं, 7 मई 1946 को प्रभु का दूत मेरे सामने प्रकट हुआ, अगले दिन यहाँ ऊपर, और मुझे सारे संसार भर में एक बेदारी को लाने के लिए भेजा। उसके ठीक अगली सुबह, जब वो झंडा यरूशलेम में फहराया गया, जब उस दोपहर को सूरज नीचे डूब रहा था, प्रभु का दूत यहाँ पर संयुक्त राज्य में उसी समय पर प्रकट हुआ, जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो और बाकी के पेड़ फल को ला रहे हैं। कितने लोगों को यह याद है, वो तारा यहाँ ओहियो नदी पर नीचे बना हुआ था बहुत वर्षों पहले। अब उसने कहा, यहाँ इसकी एक तस्वीर अभी भी यहाँ पर है, जब वो नीचे आया, कहा, तुम्हारा संदेश दूसरे आगमन के लिए एक अग्रदूत के रूप में आगे जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यूहन्ना पहले आगमन के लिए एक अग्रदूत के रूप में आगे गया। और देखो, सारे संसार भर में बेदारी फैल गई है, दसों हजार गुना हजारों और हजारों, और एक महान बेदारी। सारे नियमवादी और सारे देश भर में विभिन्न लोग और बड़ी बड़ी कलीसियाओं ने कहा, बिल्ली रविवार के दिन समाप्त हो गए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कलीसिया फिर से बेदारी में आ रही है, आम लोग, उन्हें उनके चेहरे को बचाना था। चार्ल्स फुलर ने उस स्थान को ले लिया होता, लेकिन वो बहुत बूढ़ा था, इसलिए वे बिली ग्राम के साथ गए, और परमेश्वर ने बिली ग्राम को लिया, मतलब बैप्टिस्ट कलीसिया ने लिया, और वे सब उसके पास जाने लगे। और बिली ग्राम आधे प्रचारक नहीं है, जो भाई नेविल है, जहाँ तक एक प्रचारक होने के नाते, नहीं किसी भी तरह से नहीं। लेकिन ये क्या है, उन्हें यह करना था, यह संगठित है, और हर एक जन जो ठीक इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहा है, बिली भी इसी बात को कहता है, देखो उन्हें यह करना था, और इसे परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए किया जाना था। उनके पास चारों ओर एकत्र होने के लिए आत्मा नहीं था, इसलिए उन्हें चारों ओर एकत्र होने के लिए वचन को लेना था, सो उन्होंने किया। और बिली एक वचन का प्रचारक है, और एक बहुत आकर्षक है, और वे चारों ओर एकत्र हुए, जिससे कि सारे ठंडे औपचारिकताओं को उनकी सभा में डाल दिया जाए, और अलौकिक अस्तित्व, जीवे चंगाई के साथ, और सामर्थ और कार्य और इत्यादि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के द्वारा इसे कलीसिया, रैप्चर हुई दुल्हन, जिसके पास उसके दिए में तेल है, उसे एक बेदारी में डाल देते हैं। देखो, और ठंडी औपचारिक कलीसिया की अपनी बेदारी थी, और यहाँ इजराइल अपनी बेदारी के साथ मुड़ रहा है। मेरे पास ठीक अभी मेरे घर में एक फिल्म है, आधी रात के लिए 3 मिनट, और हमारे पास उन यहूदियों की एक तस्वीर है जो अंदर आ रहे हैं, आपने इसे लुक पत्रिका में देखा है, और जहाज लदे हुए हैं, वहाँ दूर ईरान में से आ रहे हैं, और वहाँ से वे यहूदी कभी नहीं जान पाए कि यीशु कभी धरती पर था। वे वहाँ उजड़ने वाले बाबुल की ओर चले गए। यही है सब जो वे कभी जानते थे। उन्होंने जोता, आपने इसे लुक या लाइफ और दूसरी पत्रिकाओं में देखा, जहाँ उन्होंने पुराने लकड़ी के औजारों से जोता था। और जब उन्होंने उन हवाई जहाजों को आते हुए देखा तो उन्होंने सोचा, यही है ये, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बताया वे वहाँ पर होंगे। और उकाब के पंखों पर वापस यरूशलेम में लाया जाएगा। ये सही है, वे वहाँ हैं। और यहूदी ने कहा, यही है। उन्होंने सीधे आगे कदम बढ़ाया और हमने उनकी अपनी आवाज के साथ तस्वीरों को लिया और उनका इंटरव्यू लिया। सारे दुनिया भर से आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग अपने बुजुर्ग लोगों को अपनी पीठ पर लादे हुए थे और वे अंधे और अपाहिज थे, और वे संसार के विभिन्न भागों से जहाजों से उतर रहे थे, वहाँ पर आ रहे थे। और वे जमीन पर से बोरों में पत्थर उठाने लगे। और आज उन्होंने पानी के स्रोतों को पाया है, जो कि संसार का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। मृत्यु सागर बाकी के सारे संसार की तुलना में अधिक धन संपत्ति को रखता है। यहूदी वापस लौट रहे हैं या अन्य जातियों से छिपा हुआ है, लेकिन वे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। उन्होंने उन यहूदियों से कहा, उन्होंने कहा, क्या तुम अपने देश में मरने के लिए वापस आ रहे हो? कहा, हम मसीहा को देखने के लिए वापस आ रहे हैं। वो कहाँ पर है? उसे यहाँ होना चाहिए। भाई, जब आप अंजीर के पेड़ को अपनी कोपले निकालते हुए देखते हैं, उसने कहा, यह पीढ़ी तब तक जाती न रहेगी जब तक सब पूरा न हो जाए। औपचारिकताओं के साथ बेदारी को देखें, कलीसिया के साथ बेदारी को देखें, यहूदियों के साथ आने वाली बेदारी को देखें। वे मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलीसिया, आत्मा से भरी कलीसिया, दुल्हन जो उसके साथ, वे कुंवारियां उनके दियों में तेल के साथ विवाह के बोझ में जाएंगी। यहूदी कहेंगे, यह वही है, वहाँ हमारा परमेश्वर है जिसकी हमने प्रतीक्षा की है। यही है जहाँ आपके 144,000 जिसमें की रसलिट लोग मिश्रित हो गए हैं। वहाँ वे यहूदी खड़े होते हैं जो उसे ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा, वहाँ पर हमारा परमेश्वर है जिसकी हमने प्रतीक्षा की है। वे उसे देखेंगे, कहेंगे, तुम्हें वे कहाँ से मिले? तुम्हारे अपने हाथों में वे घाव के निशान कहाँ से मिले हैं? उसने कहा, मैंने उन्हें अपने मित्रों के घर में पाया। ये ठीक बात है, मेरे मित्रों का घर। वो क्या करेगा? अन्य जाति कलीसिया को महिमा में उठा लिया जाएगा और दुल्हन का विवाह मसीह से होगा। यूसुफ ने अपने आप को अपने लोगों पर कैसे प्रकट किया? उसने हरेक अन्य जाति को अपनी उपस्थिति से बाहर किया। उसने निश्चय ही किया, स्त्री के बीच के शेष बचे हुओं का क्या होगा? अजगर ने उसके मुंह से जल को उगला कि युद्ध करे। यीशु ने कहा, वे बाहरी अंधकार में डाल दिए जाएंगे और वहाँ रोना और विलाप और दांतों का पीसना होगा। सताओ और परीक्षाओं की बड़ी घड़ी अन्य जाति कलीसिया पर आएगी। तब क्या बात जगह लेगी? जब शहीद हुए लोग आते हैं, जब परमेश्वर हर चीज को उन यहूदियों से अलग कर देता है, यीशु वापस आएगा जैसे यूसुफ आया। जब उन्होंने यूसुफ को सुना, जब उसने अपने सारे पहरेदारों को और हर एक चीज को बाहर किया, और उसने छोटे बियामिन को देखा और वे वहाँ पर खड़े थे, और वे लोग यूसुफ को मारने के लिए पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे यूसुफ को मार डालेंगे, और यहाँ पर वो उनके सामने खड़ा था। उसने कहा, मैं यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब वे वास्तव में कांपने लगे, वो यूसुफ है, अब हम उसे जानते हैं। जब वो कहेगा, मैं यीशु हूँ, मैं मसीहा हूँ, वे कहेंगे, ओ प्रभु, अब हम क्या ग्रहण करेंगे? यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया था। ऐसा नहीं होगा कि वो तो ठीक है। वे उसे फिरौन के महल में रोते हुए सुन सकते थे। यूसुफ उनके लिए रो रहा था। रुके रहना जब तक यीशु उन यहूदियों को नहीं देख लेता है कि उसे उन्हें अंधा करना था, ताकि हम अन्य जातियों को अंदर आने का मौका मिले। यह एक ऐसा समय होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वह उन यहूदियों को ले लेगा। आप कभी भी चिंता न करें, वे यहूदी बच जाएंगे। जी हाँ श्रीमान, वहाँ पर ऐसा होना ही है, और इसके बारे में मेरा यही विचार है। मैं इसे वचन में और कहीं नहीं देख सकता। आपको उन तीनों को फिर से एक साथ रखना होगा। आपको उस सोई हुई कुंवारी को रखना है, उस कलीसिया को बस सामान्य अंगीकार करना है। देखो, आपको कलीसिया को लेना है। यही है, पहले यहूदी जो कि बस एक अंधा व्यक्ति है जो किनारे पर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको अगला कदम उठाना होगा, जो कि सोई हुई कुंवारी है, जो विलंब करने वाली थी और बस बाहर जाती है और कलीसिया में चली गई और कलीसिया से जुड़ गई और बहुत अच्छे लोग। तब आपको कलीसिया को लेना है, आत्मिक रैप्चर, दुल्हन वहाँ वो खड़ी होती है। वे तीन लोग आप नहीं कर सकते, वे मिश्रित नहीं हैं, जरा भी नहीं, वे सब एक से नहीं हैं, ना ही जो यहोवा विटनेस कह रहे हैं वहाँ 144,000 दुल्हन हैं, ये गलत है, ये यहूदी है। देखिए वहाँ एक दुल्हन है, यहूदी और सोई हुई कुंवारी, और आप उन सभी को लेते हैं और कहते हैं तो ठीक है, वे तीनों अलग अलग स्थानों पर हैं, वे सब तीन विभिन्न वर्ग के लोग हैं, निश्चय ही वे नहीं कर सकते। फिर जब यीशु धरती पर वापस आता है, यहूदी वे लोग क्या हैं? मंदिर के खोजे। और जब यीशु वापस आता है तो वो दुल्हन के साथ आता है। यीशु तीन बार आता है। पहली बार वो अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया, वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए दूसरी बार आता है, वो अपनी कलीसिया के साथ तीसरी बार आता है। देखा, बिल्कुल सही। तो यह सब एक महान सिद्ध आगमन है, यह सब एक महान सिद्ध परमेश्वर है, यह सब एक महान सिद्ध मसीह है, एक महान सिद्ध कलीसिया, एक महान सिद्ध छुटकारा, हर एक चीज यह एक त्रिएकता पर आता है, लेकिन यह सब एक में है। देखा, यह तीन लोग नहीं है, यह तीन नहीं है, यह तो केवल एक व्यक्ति है, एक कलीसिया, एक देह, एक मसीह, एक प्रभु, सब में आप और सब में से होते हुए आप, और इसी तरह से आदि आदि, सब एक। प्रभु आपको आशीष दे, मैंने आपको बहुत देर तक रोके रखा है। प्रभु ने चाहा तो अब यदि मुझे कुछ रातों के लिए फिर से आना होता है, या रविवार की रात को, या ऐसा ही कुछ, यदि यहाँ पास्टर के पास उसके हृदय में कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ इनका उत्तर देने का यत्न करूँगा। ओह, यहाँ कुछ बढ़िया से सवाल हैं, कितने लोग उन्हें सुनना चाहेंगे? ओह, मैं बस उन्हें पसंद करता हूँ। इससे पहले कि हम पास्टर के हाथ में सभा को दें, मैं फिर से उनमें से होकर जाऊँगा सीधा, बहुत ही जल्दी। अब इसे सुनना, पत्थर कहाँ कहाँ से प्रकाशित वाक्य 21 में वे पत्थर क्या दर्शाते हैं? यह एक अच्छा प्रश्न है। प्रकाशित वाक्य 5 के 4 पशुओं को समझाएं, एक और अच्छा प्रश्न है। 24 प्राचीन कौन है? वहाँ एक और अच्छा प्रश्न है। देखो, उत्पत्ति 38 के लाल रंग की डोरी का क्या अर्थ था? आपको याद होगा, उसने जाकर अपनी बहू को लिया और उसके साथ एक वेश्या के समान रहने लगा और उसके दाम को दिया और आगे आया। और फिर जब बालक का जन्म होता है, उन्होंने उसके हाथ पर लाल रंग की डोरी को बांध दिया, उसने हटा दिया और फिर वो वापस आ गया। वो अगला प्रश्न उसके सामने आता है। ओह, यह एक अच्छा है, यह निश्चय ही है। प्रकाशित वाक्य 11 में गवाहों की मृत्यु के संबंध में कौन से उपहार भेजे जाने हैं? यही है जब मूसा और एलिया इन 144,000 की बेदारी के लिए वापस आते हैं, वे उपहार क्या हैं? देखो वे क्या हैं? यह बढ़िया सवाल है। 1000 वर्ष के बाद संत कहाँ पर होंगे? वहाँ एक अच्छा सवाल है लड़के, क्या राज्य के बाद उनके पास किस प्रकार की देह होगी? हम दूतों का न्याय कैसे करेंगे? पहले कुरिन्थियों में दूतों का बाल विषय में क्यों है? पहले कुरिन्थियों की किताब में कुछ अच्छे प्रश्न हैं, वास्तव में बहुत ही अच्छे। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु हमें एक साथ इकट्ठा होने और इन बातों पर चर्चा करने की अनुमति देगा। यह सब उसकी महिमा के लिए है। हम उनके विचारों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बात को कहूँगा, यदि आप सभी लोगों को उन प्रश्नों को सुनकर उतना ही आनंद मिलता है जितना मुझे उनके बारे में बोलते हुए मिलता है, तो हमारे पास एक अद्भुत समय होता है। आमीन, आमीन। तो ठीक है, अब प्रभु आपके लिए वास्तव में भला होगा। सभाओं को मत भूलना, भाई नेविल के प्रसारण को अब, जो कि WLRP पर है, शनिवार सुबह 9 बजे, नेविल 4 का समुदाय, और मुझे यकीन है कि वे आपकी अच्छाई के लिए होंगे। चालू करके और उन्हें सुने, और यदि मैं कर सकता हूँ, यदि मैं समय पर वापस आता हूँ या देखता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, तो मैं पत्नी को फोन करूँगा, यदि प्रभु मुझे अनुमति देता है कि मैं जाकर प्रिय बूढ़े भाई बोसवर्थ से मिलूं, मैं आप सब और मैं रविवार रात को वापस आऊंगा। प्रभु अब आपके लिए भला हो, और भाई पास्टर यहाँ कुछ मिनट के लिए आ जाएं और उसे सभा को लेने दें, और आप ये पसंद करते हैं? कितने लोग अपने घर में प्रार्थना करते हैं? आइए देखते हैं, सारे ये ठीक है। परमेश्वर के समीप बने रहें, अच्छे बने रहो। छोटे बच्चों, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो ठीक है भाई नेविल।